जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है आवाज? हरे कृष्ण तो आवाज ही नहीं इसमें. ओए गॉड तुम बढ़तेंगा केल टू सम कीर्तन केल प्ले ऐसे बढ़िया स्कर्तान घर सॉन्ग बुक है किसी के पास?
ये तार ही नहीं.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण. किसी का सॉन्ग बुक है? है ये सॉन्ग बुक है करताल है. आवाज क्यों नहीं आ रही इसमें? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तो आवाज़ बड़ा करो, आवाज़ थोड़ा ऊंचा करो. हाँ हरे कृष्ण. मोबाइल आप अपना स्विच ऑफ करके रखिए या साइलेंट मोड में रखिए. पानी इसमें हाँ प्ले दो ताल तीन ताल प्ले तीन ताल.
राधा कृष्ण ताय नाम हटे देना
ये भजन वैसे तो नित्यानंद प्रभु के लिए लेकिन गा सकते हैं ये अच्छा है ना. नवदीप में लोग भजन गा रहे थे पहले. सुना आप लोगों ने? भजन नहीं सुना होगा. ये बुक है बुक में नहीं होगा ना.
कौन सा भजन प्रभु?
ये भजन नित्यानंद प्रभु के लिए है. इसको कहते हैं दलालेर गीत. भक्त ठाकुर के द्वारा लिखे थे ये. ओ, आप सुनिए ध्यान से. बड़ो सुखेर खबर गाय बड़ो सुखेर खबर गाय सुर बिकुन जेते नामेर हाट खुले छे सुर भी कुंजे तेना मेर हाट खुले छे खोदनिता 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 नहीं है खुद 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 निताए खुद निताए बड़ो सुखेर खबर गाए मतलब ये बहुत ही सुख देने वाला खबर है। नित्यानंद प्रभु स्वयं क्या कर रहे हैं, वो हरि नाम का वितरण कर रहे हैं। सुरभि कुंज में उन्होंने नाम का बाजार खोला है, खुद निताई ने स्वयं खोड़ा नहीं है खुद, बंगाली में खुद बोल देते हैं इसलिए बुलाते हुए। बड़ो सुखेर खबर गाय बड़ो सुखेर खबर गाय सुर भी कुंजे ते नामेर हाट खुले छे खो निताय खो निताय बड़ो मजार कथा ताय बड़ो मजार कथा ताय सदा मूले शुद्ध नाम सही हाटे थे बिकाय खोदनिताय 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 जता भक्त वृंदावासी जता भक्त वृंदावासी अधिकारी देखे नाम बेचे दारो काशी अधिकारी देखे नाम बेचे दारो काशी खोदनिताय खोदनिताय यदि नाम किन में भाई यदि नाम किन बे भाई अमर संगे चलो महाजनेर का छे जान अमर संगे चलो महाजनेर का छे जान खोदनिताय खोदनिताय तुमी किनबे कृष्ण नाम तुमी किनबे कृष्ण नाम तुमी किनबे कृष्ण नाम तुमी किनबे कृष्ण नाम दस्तूरी लोई वो आमी पूर्ण हो बेता दस्तूरी लोई वो आमी पूर्ण हो बेका खोदनिताय खोदनिताय बड़ो दयाल नित्यानंदा बड़ो दयाल नित्यानंदा बड़ो दयाल नित्यानंदा बड़ो दयाल नित्यानंदा श्रद्धा मात्र लोए देन परमानंदा, श्रद्धा मात्र लोए देन परमानंदा, खोदनिताय 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 खोदनिताय। एक बार देख ले चखे जाल, एक बार देख ले चखे जाल, गौर बोले निताय देन सकल संभार, गौर बोले निताय देन सकल संभार, खोदनिताय खोदनिताय, देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा, देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा, जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा, जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा, खोदनिताय 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 खोदनिताय। हमनी छड़े माया जाल, हमनी छड़े माया जाल, हमनी छड़े माया जाल, हमनी छड़े माया जाल, ग्रह थको बने थको ना थके जंजा, ग्रह थको बने थको ना थके जंजा, खोदनिताय 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 खोदनिताय। আর নাই কো কলির ভাই, আর নাই কো কলির ভাই, অচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়ামা, অচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়ামা, খোদনিতায় খোদনিতায়, ভক্তি বিনো ডাকি কয়, ভক্তি বিনো ডাকি কয়, নিতাই চরণ বিনা আর নাই শ্রয়, নিতাই চরণ বিনা নাহি আশয়া, খোদনিতায় খোদনিতায়, বড় সুখের খবর গায়, বড় সুখের খবর গায়, বড় সুখের খবর গায়, বড় সুখের খবর গায়, সুরভি কুঞ্জেতে নামেরা ঠুলেছে, সুরভি কুঞ্জেতে নামেরা ঠুলেছে, খোদনিতায় খোদনিতায় Godanitai,
Godanitai,
Jayanimai, Jayanitai, Jayanimai, Jayanitai. Jayanitai, Jayanimai, Jayanitai, Jayanimai. Jayanitai, Jayanimai, Jayanitai, Jayanimai. विश्वपाद परमहंस परिप्रज का आचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभयचनारविंद भक्ति वेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से घोष श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा मैया यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर पूर्णिमा महा महा महोत्सव की जय। श्री श्री गौर हरि की जय। श्री श्री गौर सुंदर की जय। निताय गौर प्रेमानंद और ग्लोरी सुदर्शन मंडली बोले और ग्लोरी सुदर्शन मंडली बोले और ग्लोरी श्री गुरु अंग गौरंग हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपरान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद लीला मय विग्रहाया हेमाव दिव्या छवि सुंदराया तस्मै प्रेम रस प्रदाया चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हम सब भक्तों के लिए जो चैतन्य महाप्रभु के इस संप्रदाय में हैं। श्री श्री ब्रह्म मध्वा गौड़े संप्रदाय से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और आज एक दृष्टिकोण से आज हम सभी भक्तों के लिए ये नया साल का दिन भी है। आप सबको नए साल की बधाई भी हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो 523 साल पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवदीप धाम में, श्रीधाम मायापुर में और योगपीठ में जगन्नाथ मिश्र शची माता के घर पे। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के जो मुख्य कारण हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ये जानने के लिए कि प्राइमरी रीज़न क्या है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के आने के प्राइमरी रीजंस यानी इंटरनल रीजंस बता रहे हैं और साथ में एक्सटर्नल रीजंस भी बता रहे हैं, गौण कारण भी बता रहे हैं। तो भक्तों को चाहिए कि दोनों कारणों को जाने। इस तरह से हम लोग ये जो रूप है गौरंग महाप्रभु का इसकी और प्रशंसा कर पाएंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये है पंच तत्व। पंच तत्व में पंच तत्वात्मकम जिसमें पांच विषय वस्तु हैं, पांच तत्व हैं इसमें। पंच तत्व, पंच तत्व का मतलब क्या है, वो दरवाजा बंद कर दिए, या तो वही बच्चों को चुप कराए, दोनों में से कुछ एक तो हो। तो पंच तत्व यानी कि पांच तत्व हैं इसमें समझने के लिए। इन पांच तत्वों में स्वयं भगवान हैं और साथ में उनके अवतार हैं, विष्णु तत्व हैं, साथ में शक्ति तत्व हैं, साथ में जीव तत्व भी हैं। तो यहाँ पर पंच तत्वात्मकम साथ में कृष्णम परम भगवान श्री कृष्ण को भक्त रूप में कौन है, श्री नित्यानंद प्रभु भक्त रूप, और हाँ भक्त रूप में प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण, और स्वरूप का मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के अपने ही स्वरूप यानी कि नित्यानंद प्रभु, और भक्त अवतार अद्वैताचार्य भक्त अवतार हैं, महाविष्णु के अवतार हैं। महाप्रभु अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण है। नित्यानंद प्रभु अवतार नहीं है, स्वयं बलराम है। अद्वैताचार्य महाविष्णु नहीं है, महाविष्णु के अवतार है, स्वयं महाविष्णु नहीं है, महाविष्णु के अवतार है। और उसके बाद भक्ताख्यम कौन है, श्रीवास पंडित। तो भक्त के रूप में जाने जाते हैं श्रीवास पंडित, और साथ में भक्त शक्तिकम यानी कि शक्ति तत्व गदाधर पंडित। तो ये है पंचतत्व इस प्रकार से जाने जाते हैं। तो ये जो पांच तत्व हैं, इन पांच तत्वों में श्री चैतन्य महाप्रभु अचिंत भेदावेद तत्व प्रस्तुत कर रहे हैं। इन पांच तत्वों के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु अचिंत भेदावेद तत्व सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। पद्म पुराण में दिया है, यह श्लोक है, संप्रदाय विहीना मंत्रः निष्फलः ते मतः। तो इस श्लोक में पद्म पुराण में दिया है कि चार संप्रदाय होंगे कलयुग में, और उसके चार आचार्य होंगे, और ये अपना अपना वाद प्रकट करेंगे, और वो कौन कौन से वाद हैं ये जानना भी जरूरी है। तो श्रीपाद मध्वाचार्य ने जो वाद प्रकट किया मायावाद का खंडन करने के लिए, इन सब ने वाद प्रस्तुत किया मायावाद का खंडन करने के लिए। तो श्रीपाद माधवाचार्य ने जिस दर्शन को प्रस्तुत किया उसको कहते हैं द्वैतवाद। आप कहते हैं अद्वैतवाद, और हमारा दर्शन क्या है, द्वैतवाद। मध्वाचार्य के चित्र को आप देखेंगे तो बोलते हैं द्वैतवाद, इस प्रकार से वो दिखाते हैं, इशारा करते हैं, है ना। यानी कि द्वैत भगवान और जीव दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों का अपना अपना व्यक्तित्व है, भगवान का और जीव का, कहते द्वैतवाद। इसी तरह श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपना दर्शन प्रस्तुत किया, मायावाद का खंडन किया उन्होंने भी, विशिष्टाद्वैतवाद। और उसके बाद श्रीपाद निंबार्काचार्य ने उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया द्वैत अद्वैतवाद। निंबार्क संप्रदाय का दर्शन क्या है, द्वैत अद्वैतवाद। और उसके बाद विश्व स्वामी जो रुद्र संप्रदाय के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया, रुद्र संप्रदाय की स्थापना की कलयुग में। रुद्रद्वीप में विश्व स्वामी को रुद्र यानी शिव जी के दर्शन प्राप्त हुए, और उन्होंने भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। तो संप्रदाय का सिद्धांत क्या है, क्या सिद्धांत ना, उनका सिद्धांत है शुद्ध अद्वैतवाद, प्यूरिफाइड शुद्ध अद्वैतवाद, मोनिज्म, शुद्ध अद्वैतवाद। लेकिन शंकराचार्य का दर्शन क्या है? केवल अद्वैतवाद, केवल अद्वैतवाद। तो इस प्रकार से ये चारों संप्रदाय के ये दर्शन है। श्री चैतन्य महाप्रभु पद्म पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे, क्या करेंगे, इन चारों संप्रदाय का निष्कर्ष देंगे। इन सब ने अपना अपना वाद प्रस्तुत किया, लेकिन निष्कर्ष क्या है, सिद्धांत क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि शंकराचार्य के दर्शन को काटने के लिए इन्होंने अपना वाद प्रस्तुत कर दिया, लेकिन सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। इस पंचतत्व के द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत किया है, अचिंत भेदावेद तत्व सिद्धांत। शिवास पंडित जीव तत्व है, शिवास पंडित विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन उनकी आराधना पंचतत्व में होती है, उनकी आराधना पंचतत्व में होती है, उनको पंचतत्व में गिना जाता है। तो शिवास पंडित जीव तत्व होते हुए उनकी आराधना पंचतत्व में होती है, क्यों? क्योंकि वो विष्णु तत्व के साथ एक होते हुए भी एक नहीं है, बड़ा ही अचिंत्य है, एक होते हुए भी एक नहीं है। हम भी जीव तत्व हैं, हम सब जीव तत्व हैं, क्या है, जीव तत्व है, तटस्था शक्ति। हम भी भगवान के साथ एक हैं, फिर भी एक नहीं है। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत बता रहे हैं। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व आपको हर जगह मिलेगा। जिन भक्तों ने चश्मा पहना है उनका शीशा अलग है चश्मे से, लेकिन चश्मे में जब शीशा डाला जाता है तो एक हो जाता है। तो शीशा चश्मे के साथ एक होते हुए भी एक नहीं है। आपने कपड़ा पहना हुआ है, कपड़ा पहना हुआ है या कुर्ता पहना हुआ है? कुर्ता पहना हुआ है, लेकिन वो कुर्ता कपड़ा है, लेकिन फिर भी कपड़ा नहीं है। ये टेबल है, ये लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर किताबें रखी हुई हैं, ग्रंथ रखा हुआ है, लेकिन ये लकड़ी है, फिर भी लकड़ी नहीं है, टेबल है। तो ये सिद्धांत आपको हर जगह मिलेगा। भगवान का अर्च्य विग्रह संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन संगमरमर नहीं है, अर्चा विग्रह है ना। सारे भौतिक तत्व आ जाते हैं, लेकिन फिर भौतिक तत्व आने पर भी वो अर्चा विग्रह कहला जाता है। तो ये अचिंत भेदाभेद तत्व है ना। पानी भी भौतिक है और पृथ्वी भी भौतिक है, लेकिन पानी पानी है और पृथ्वी पृथ्वी है, दोनों में भेद है। पानी का कार्य पानी ही कर सकता है, जल का कार्य जल ही कर सकता है, और पृथ्वी का कार्य पृथ्वी करती है। और ये सब क्या है, भगवान क्या कहते हैं, भिन्न प्रकृति रष्टदा, भगवान गीता में कहते हैं, भूमि रपो नलो वायो खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार मित्य में भिन्न प्रकृति रष्टदा। ये मेरा भिन्न प्रकृति है, ये भिन्न प्रकृति होते हुए भगवान की भिन्न प्रकृति होते हुए भी भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता। सूर्य का प्रकाश आपके कमरे के भीतर आता है, लेकिन सूर्य नहीं आता है। यह है भेदाभेद तत्व। तो इस तरह से भेदाभेद तत्व हर जगह मिलेगा, लेकिन इस तत्व को जब भगवान के ऊपर लागू किया जाता है तो यह अचिंत्य बन जाता है। भगवान के साथ जब इसको समझना होता है तो अचिंत्य हो जाता है। और भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः तत्वतो ततो माम ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। कोई मुझे तत्व से जान सकता है कब, जब वो मेरी भक्ति करेगा, मेरी प्रेमा भक्ति में लगेगा, तब उस तत्व को समझ सकता है, अन्यथा इन तत्व को नहीं समझा जा सकता है। विशेष रूप से जब इसका निरूपण जो है भगवान के साथ किया जाता है, इसका स्पष्टीकरण भगवान के साथ किया जाता है, तो ये बहुत समझने वाली बात। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के कई कारण हैं, हम कुछ बताएंगे आपको मुख्य कारण और साथ में गौण कारण भी बताएंगे। मुख्य कारण जो है आपको थोड़ा विस्तार से बताएं। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, श्री राधा या प्रणय महिमा की दृश्यो वान्य वा स्वाद्यो येनाद भूत मधुरिमा की दृश्यो वा मदीय सौख्यम चास मद अनुभवत की दृश्यम वेति लोभा तद्भावाड्या समजनी शशि गर्भ सिंधो हरिंदु। तो ये श्लोक लिखा है कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में। इस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के आने का मुख्य कारण बताया है। यह जो श्लोक है ये आदि लीला में ये श्लोक मिलता है और श्लोक संख्या है 6। और साथ में चैतन्य महाप्रभु के आने के गौण कारण भी पता चलते हैं। ये मुख्य कारण ही जो है हरी बोल शांत हो गया बच्चे। गौरंगा। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, अनर्पित चरीम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयुतम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वा शचिनंदन। है ना, तो कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि मेरे हृदय के अंतकरण में आप विराजमान हो, है ना, और हृदय के अंतकरण में कैसे विराजमान हो, दिव्य रूप में विराजमान हो, ऐसे नहीं विराजमान हो। मेरी इच्छा है कि आप दिव्य रूप में मेरे हृदय के अंतकरण में विराजमान हो। किसको कह रहे हैं ये, परम भगवान यानी कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो शची माता के गर्भ से प्रकट हुए उनके पुत्र के रूप में, वो मेरे हृदय के अंतकरण में क्या करें, विराजमान हो। प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं, मे द सुप्रीम लॉर्ड हु इज नोन एज द सन ऑफ श्रीमती शची देवी बी ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड इन द इनर मोस्ट चेंबर्स ऑफ योर हार्ट। प्रभुपाद का ट्रांसलेशन देखिए कितना है ना, सटीक ट्रांसलेशन अनुवाद करते हैं प्रभुपाल। ऐसे शब्द और ऐसे भाव कहीं मिलेंगे नहीं। वास्तव में ऐसे ग्रंथों का अनुवाद वही कर सकता है जो चैतन्य महाप्रभु का कोई निजी पार्षद हो, उनका अंतरंग पार्षद ही इस ग्रंथ का अनुवाद कर सकता है, अन्यथा इस ग्रंथ का अनुवाद करना संभव ही नहीं है। समर्पयुतम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम है ना, हरी पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वा शचीनंदन। अब क्या है, वो इस कली काल में प्रकट हुए हैं और अपनी हित की कृपा प्रदान कर रहे हैं जो पहले किसी अवतार ने नहीं किया, किसी अवतार ने नहीं दिया। लोचनदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, परम करुणा पाहु दुई जाना निताई गौरा चंद्रा सब अवतार सारा शिरोमानी केवल आनंद कंदा। तो जो चैतन्य महापुरुष दिया है वो किसी भी अवतार में नहीं दिया गया। चैतन्य महापुरुष जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। चैतन्य महापुरुष ने जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। अन्य अवतार इसे विशेष परिस्थिति या विशेष कारण से प्रकट हुए, धर्म की स्थापना करने के लिए और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपनी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए हैं और उन्होंने जो कृपा प्रदान की है वो कृपा क्या है, बिना किसी हेतु के है, उसमें कोई हेतु नहीं है। उन्होंने बिना किसी कारण के अपना प्राकट्य किया है और इस प्राकट्य में वो क्या दे रहे हैं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिया है, पहले कभी नहीं दिया। क्या नहीं दिया उन्होंने, क्या नहीं दिया उन्होंने? उन्नत उज्ज्वल रसाम समर्पयुतम, समर्पयुतम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम, स्वभक्ति श्रेयम, यानी कि जो सबसे सब्लाइम, द मोस्ट सब्लाइम एंड रेडियंट मेलो ऑफ डिवोशनल सर्विस, द मेलो ऑफ कंजुगल लव। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है? उन्नत उज्ज्वल रस जो है प्रदान किया है इस प्राकट के द्वारा, इस प्राकट के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्नत उज्ज्वल रस दिया है, ब्रज का प्रेम दिया है, ब्रज का प्रेम दिया है। ब्रज का प्रेम किसको दिया है? सबको दिया है, सबको दिया है। ब्रह्मारा दुर्लभा प्रेमा सब कार्य जाचे, कौन बोल रहा है? तो इसमें भजन में बताया जा रहा है जो ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है वो कृष्ण चैतन्य यानी कि गौर सुंदर ने सबको प्रदान कर दिया, पति से पति जीव को भी दे दिया है ना। और ये नहीं देखा ये पशु योनि में है या मनुष्य योनि में है, ये पापी है या पुण्य आत्मा है, सबको दिया है। कोई पूछ सकता है, प्रश्न किया किसी ने, चैतन्य महाप्रभु ने अगर सबको दिया है तो हमें क्यों नहीं मिला? चैतन्य महाप्रभु ने सबको दिया है, बहुत सरल तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि इसको समझना भी तो है ना। आप कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे फिर हम लोग? तो इसको इस तरह से समझा जाए जैसे आपके घर में पानी भेजा जाता है ना, और पानी आपको नलके से प्राप्त होता है, लेकिन नलका अगर आप बंद कर दें तो जल भेजने वाले का दोष नहीं है, नलका हमें खोलना होगा। सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, ये उनकी हरित की कृपा है, लेकिन हम खिड़की बंद कर लें एसी चलाने के लिए तो सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं आएगा। इसी तरह से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ब्रज का प्रेम देना चाहते हैं, उन्नत उज्ज्वल रस देना चाहते हैं, लेकिन क्या हम चाहते हैं? प्रेम तो दो तरफ से होता है, भगवान हमसे प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम प्रदान करना चाहते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने घोरतिश्वे नमः। श्रील रूप गोस्वामी ने जब चैतन्य महाप्रभु को प्रयाग में देखा तो उन्होंने देखते ही यही श्लोक बोला कि आप तो कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, आप कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कली काल में लोग इतने ज्यादा पतित हैं कि लोग इस प्रेम को चाहते नहीं है। उन्होंने अपने जो इनर मोस्ट चेंबर्स हैं हार्ट के, जो यहां पे लिखा है प्रभुपाद ने, इनर मोस्ट जो चेंबर्स हैं उसके दरवाजे उसकी खिड़कियां सब बंद कर दिए हैं। इसलिए क्या है कि कृष्ण प्रेम की जो है किरणें जो हैं इन अंतरंग क्षेत्र में जो है प्रवेश ही नहीं करती हृदय के। सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा शचिनंदना, सदा हृदय कंदरे, कंदरे का मतलब होता है चेंबर्स। प्रभुपाद ने बहुत सोच समझ के एक एक शब्दों को चुना है, अनुवाद करना आसान नहीं है, ये संस्कृत और बंगाली भाषा है, मधुर मधुर भाषा है बंगाली भाषा, ये तो संस्कृत की भाषा है, इसका अनुवाद अंग्रेजी में हो ही नहीं सकता है, लेकिन प्रभुपाद जैसे जब महाभागवत इसका अनुवाद करते हैं तो फिर भी अंग्रेजी भाषा भी मधुर लगती है, ये अंग्रेजी भाषा की योग्यता है और इस भाषा में कोई योग्यता नहीं है कि प्रभुपाद ने अंग्रेजी में इन ग्रंथों का अनुवाद किया है। तो जिनको ये अंग्रेजी भाषा आती है उनको प्रभुपाद जी की किताबें अंग्रेजी में ही पढ़नी चाहिए तो समझ पाएंगे कि प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने ये उन्नत उज्ज्वल रस किस तरह से प्रदान किया। उन्नत उज्ज्वल रस श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के द्वारा। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, और सबने कृष्ण प्रेम, जो जो पार्षद थे भगवान के वो तो कृष्ण प्रेम में पहले से डूबे थे, और ज्यादा कृष्ण प्रेम में डूब गए। और श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर कहते हैं श्रीधाम मायापुर में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है बरसात के समय, वर्षा ऋतु के समय, और उस समय मान लीजिए आपके हाथ में ग्रंथ है, आपके हाथ में भगवद गीता है, आपके हाथ में श्रीमद् भागवत है, आपके हाथ में श्री चैतन्य चरितामृत है, और बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, क्या किया जाए? और आपके उधर के ऊपर चला गया है पानी, गर्दन तक पहुंचने वाला है, तो करें क्या? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राय देते हैं भगवद गीता छोड़ दो, भार कम हो जाएगा, गंगा जी में प्रवाहित कर दो उसको, अर्पित कर दो गंगा जी को, और पानी बढ़ रहा है, और जल बढ़ रहा है, और गर्दन से भी ऊपर जाने लगा जल, मुंह तक आ गया है, तो क्या करें? श्रीमद् भागवत को भी छोड़ दो। फिर और आगे जल बढ़ गया, आंखों तक पहुंच गया और माथे तक पहुंच गया जल, और पूरा शरीर ढक गया है गंगा जी के जल से, क्या करें अब? केवल श्री चैतन्य चरितामृत हाथ में ग्रंथ रह गया है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लेके डूब जाओ। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इस ग्रंथ का पाठ किया था 108 बार, अपने शिष्यों को भी कहा, लेकिन शायद ही कोई पढ़ पाया हो। श्री चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने स्वयं 108 बार इसका पाठ किया। हाँ, तात्पर्य तो उन्होंने दिया है ना, गौड़िया भाष्य, बिना तात्पर्य के भी पढ़ लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो इस प्रकार अनर्पित चरिम चिराद, मतलब जो अर्पित नहीं किया, जो पहले नहीं दिया, वो श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में दे रहे हैं, जो पहले कभी नहीं दिया। प्रत्येक कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु तो नहीं आते हैं, 999 कलयुग के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, अन्य कलयुग में गौर नारायण आते हैं और वैकुंठ नाम का वितरण करते हैं, उस नाम के द्वारा कोई अधिक से अधिक वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन 999 कलयुग के बाद जब गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट होते हैं तो वो क्या देते हैं? गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन। तो ये साधारण हरि नाम नहीं है, ये है प्रेम नाम संकीर्तन। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर गौर हरि को प्रेम पुरुषोत्तम कहा गया है, परम भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। चैतन्य महापुरुष प्रेम प्रदान करने वाले हैं, प्रेम प्रदान करने वाले हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब आगे जो श्लोक ले रहे हैं जिसमें मुख्य कारण बताया है वो बड़े ध्यान से समझिएगा। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान्येव स्वाद्यो येनाद्भूता मधुरिमा कीदृशो वामदीयः सौख्यम चास्य मद अनुभवता कीदृशम वेति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनी शशिगर्भ सिंधौ हरिन्दुः। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, हमने पहले आपको क्या बताया, पहले श्लोक में आपको मुख्य कारण भी बता दिए और गौण कारण भी बता दिया। गौण कारण क्या है? युग धर्म की स्थापना करना, क्योंकि प्रत्येक कलयुग का युग धर्म हरिनाम ही है। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आगे इसका वितरण करते हैं तो प्रत्येक जीव को ब्रज प्रेम प्राप्त हो सकता है अगर वो चाहे तो। और यहां पर अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक में महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के आने के तीन मुख्य कारण बता रहे हैं, तीन प्रमुख कारण बता रहे हैं, 3 internal reasons for his appearance। तो वो क्या क्या है पहले ध्यान से सुनिए। पहला बता रहे हैं 3 confidential desires। तो पहला है श्री राधा या प्रणय महिमा कीदृशो वान्येवा, कि राधा रानी की जो प्रणय महिमा है वो क्या है, उनकी प्रेम की महिमा क्या है। पहले आप 3 मूल कारण समझ लीजिए, फिर इसके पीछे और हम जाते हैं। और दूसरा क्या बता रहे हैं, स्वाद्य येनाद्भूत मधुरिमा कीदृशो वाद्य मदीहा, ये दूसरा कारण है। इसमें दूसरा कारण ये बता रहे हैं, श्रीमती राधारानी जिस प्रकार श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का आस्वादन करती हैं, उस तरह श्री कृष्ण भी करना चाहते थे, ये दूसरा कारण है। कब करना चाहते थे? जब ब्रज की लीलाएं समाप्त होने लगी, है ना, जब ब्रज की लीलाएं समाप्त होने लगी, द्वापर युग के अंत में, जब ब्रज की लीलाएं समाप्त होने लगी तो परम भगवान श्री कृष्ण की कुछ इच्छाएं रह गई, तो उन इच्छाओं में ये तीन मूल इच्छाएं हैं। ये तीन इच्छाएं परम भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से अपनी तीन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए। द्वारका में श्री कृष्ण ने अपना ही सुंदर रूप देखा, रत्नों में मणियों में अपना सौंदर्य देखा और अपने ही सौंदर्य से प्रभावित हो गए। श्रीमती राधारानी भी श्री कृष्ण के रूप माधुर्य से आकर्षित होती हैं, तो उनका आकर्षण क्या है ये जानना चाहते हैं। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है, जब वो रूप माधुर्य का आस्वादन करती हैं, सौख्यम च अस्य मद अनुभवता कीदृशम वेति लोभात, तो उस रूप माधुर्य का श्रीमती राधारानी जब आस्वादन करती हैं तो उनको जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद की भी अनुभूति करना चाहते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि कृष्ण को वो आनंद नहीं मिल रहा है जो श्रीमती राधारानी को मिलता है। श्रीमती राधारानी जब कृष्ण के रूप माधुर्य का आस्वादन करती हैं और उसका आनंद प्राप्त करती हैं, वो आनंद कृष्ण को नहीं मिल रहा है अपने रूप को देखकर। तो कृष्ण परम भगवान है कि नहीं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभी सभी कारणों के कारण परम भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन अपनी ही शक्ति श्रीमती राधारानी के इस महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको जो आनंद मिल रहा है रूप माधुर्य का आस्वादन करके, उस आनंद की अनुभूति श्री कृष्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इच्छाएं रह गई। भगवद गीता में भगवान ने क्या बोला है? यम व्यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेया सदा तद् भाव भावितः। क्या मतलब है इसका? अंत काल में जिस तरह आपका स्मरण होगा, जो आपकी इच्छा होगी, जहां आपका मन होगा वहीं आप जाएंगे, उस प्रकार का आपको शरीर प्राप्त होगा, है कि नहीं? लेकिन भगवान जब अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब भगवान और कल्प में या अगले युग में जब भगवान अवतरित होते हैं या प्रकट होते हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, तो वो साधारण जीव की तरह नहीं होता। कोई सोचे कि शायद हो सकता है कि परम भगवान कृष्ण की इच्छाएं रह गई, इस कारण से उनको दोबारा शरीर लेना पड़ा, दोबारा जन्म लेना पड़ा, जिस तरह से हम जन्म लेते हैं। मायावाद भाष्य सुनीले होए सर्वनाश, है ना, मायावादी भाष्य सुनीले होए सर्वनाश। तो मायावादी भाष्य बिल्कुल ऐसे ही है, वो ये कहते हैं जिस तरह से हमारी इच्छाएं रह जाती हैं और हम नाना प्रकार की योनियों में प्रवेश करते हैं, इसी तरह से परम भगवान कृष्ण भी क्या करते हैं, वो भी नाना प्रकार के अवतार लेते हैं, क्योंकि उनकी भी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। कितना भयानक है यह मायावाद दर्शन, सोच के देखिए। जब भगवान नरसिंह देव के रूप में थे और नरहरि रूप में वो लीला कर रहे थे और उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया, हिरण्यकश्यप का वध किया और हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर जाकर बैठ गए भगवान नरसिंह देव, तो अलग अलग देवी देवता वहां पर उपस्थित थे, साक्षात लक्ष्मी जी भी वहां पर मौजूद थी, शिव जी भी वहां मौजूद थे, ब्रह्मा जी भी वहां मौजूद थे, ये सब वहां पर मौजूद थे और प्रहलाद महाराज भी मौजूद थे। किसी का साहस नहीं हुआ कि वो भगवान नरसिंह देव के निकट जा सके, उनके क्रोध को देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। तो लक्ष्मी जी ने कहा मेरे बस का नहीं है, शिव जी ने कहा नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा एक ही तरीका है, प्रहलाद महाराज को आगे बढ़ाया जाए। प्रहलाद महाराज जो हैं वो क्या है, शुद्ध भक्त हैं, ना वो कर्म मिश्रित भक्त हैं ना वो ज्ञान मिश्रित भक्त हैं, वो शांत रस में हैं। तो शुद्ध भक्ति यहां से प्रारंभ होती है वास्तव में। तो प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव के पास गए और भगवान नरसिंह देव उन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया और प्रहलाद महाराज के सर को चाटने लगे, सिंह की तरह, सिंह की तरह चाटने लगे। तो जब ऐसा वो करने लगे तो भगवान नरसिंह देव के हृदय में वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ। लेकिन नरहरि रूप में भगवान वात्सल्य प्रेम कैसे दिखाएंगे, इसलिए उनकी वो इच्छा रह गई। वो उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की ब्रज में, जब वो माता यशोदा के पुत्र के रूप में आए, कृष्ण के रूप में, और पूरा उन्होंने वात्सल्य रस का आस्वादन किया। इसी तरह से दंडकारण्य के ऋषिगण जब भगवान श्री राम को देखे, उनके सुंदर रूप को देखा, उनसे प्रभावित हुए और उनके साथ जाना चाहते थे, उनकी पत्नियां बनकर भगवान राम ने कहा कि मैं अभी मर्यादा का पालन कर रहा हूं, जब मैं ब्रज में प्रकट होऊंगा और रास नृत्य करूंगा तो आप सब आना, गोपियों का रूप आपको मिलेगा और आप सभी गोपियां बनकर आप सभी रास नृत्य में भाग लेना। तो इस तरह से भगवान राम की वो इच्छा रह गई, भगवान नरसिंह देव की इच्छा रह गई और इन इच्छाओं को पूरा किया कब, परम भगवान श्री कृष्ण के रूप में। परम भगवान कृष्ण ने भी अपनी लीलाएं प्रकट की, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। परम भगवान श्री कृष्ण कौन है, रसराज श्री कृष्ण है, रसराज श्री कृष्ण है, रस के भंडार है, अखिल रसामृत मूर्ति। भक्ति रसाम सिंधु में शिल रूप गोस्वामी प्रारंभ में भगवान कृष्ण के लिए बता रहे हैं अखिल रसामृत मूर्ति, है ना, यानी कि वो रसामृत मूर्ति है, उसके भंडार है, भंडार है, ट्रेजर है, एकदम किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन वही परम भगवान श्री कृष्ण जब वो श्रीमती राधारानी की प्रेम को देखते हैं, उनके प्रेम की महिमा को देखते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो यानी कि वो इच्छा भी अभी पूरी नहीं हुई, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, है ना, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, है ना। इसे श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में लिखा है अभिज्ञः स्वराट, क्या लिखा है, अभिज्ञः स्वराट। तो अभिज्ञा का मतलब क्या है, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसके बारे में भगवान कृष्ण को जानकारी ना हो। वो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं, है ना, और कुछ जानने योग्य नहीं है उनके लिए, सब कुछ वही जानते हैं। तो लेकिन श्रीमती राधारानी के प्रेम को नहीं जान पाए, श्रीमती राधारानी का जो उत्कट प्रेम है, अगर श्रीमती राधारानी के प्रेम को सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी समझ लेगा तब समझ पाएंगे कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है। कई बार भक्त लोग जब प्रारंभ में आते हैं, वो अर्चे वगैरह की सेवा करना चाहते हैं, तो उनको बताते हैं क्योंकि श्री श्री गौरताय बहुत दयालु हैं, अपराध नहीं लेते हैं, तो उनको सुझाव दिया जाता है कि आप गौरताय की सेवा पूजा करें। लेकिन जो वास्तव में गौर सुंदर की सेवा कर रहा है, नित्यानंद प्रभु की सेवा में लगा हुआ है, वो जो सेवा कर रहा है वो सबसे सर्वोच्च सेवा है, उसके आगे कुछ है नहीं। सुशील गौर गोविंद महाराज कहते थे भक्ति नहीं पुण्य, यानी कि जो उत्कट प्रेम है, सबसे सर्वोच्च प्रेम है, जो प्रदर्शित किया श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो प्रकट किया और प्रदान भी किया, वो पहले कभी नहीं किया। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु की आराधना करता है, श्रील जी गोस्वामी या श्रीमद् भागवत में लिखा है यजंति ही सुमे दशहा, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं वो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा सेवा करते हैं, आराधना करते हैं। तो ये प्रारंभिक सेवा नहीं है, ये प्रारंभिक सेवा नहीं है केवल, ये सर्वोच्च सेवा है, ये अल्टीमेट गोल है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है आए, तीन मुख्य कारण। अब क्या हुआ, अब और सुनिए, ब्रज लीला में निधुवन है, वहां पर विशाखा जी विराजमान थी, ललिता जी भी थी, अन्य गोपियां भी थी निधिवन में। विशाखा जी ने क्या देखा, विशाखा जी ने राधारानी को देखा, विशाखा जी ने कृष्ण को देखा, पहले उनको अलग अलग देखा, फिर उन्होंने क्या देखा, विशाखा जी ने राधा और कृष्ण के मिलन को देखा, यही केवल देखा। लेकिन वही विशाखा सखी जब रामानंद राय के रूप में आए गौर लीला में और गोदावरी नदी के तट पे उनका संवाद हुआ, उन्होंने सुनाया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना, रामानंद राय के मुख से सुना, लगातार 7 दिन के लिए कथा चलती रही। रामानंद राय ने प्रार्थना की कि आप अपने आप को मुझसे क्यों छुपा रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है कि एक बार कृपा करके आप मुझे अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराएं। ये भी वास्तविक रूप है, लेकिन जो मूल रूप है वो भी दिखाएं आप, जो ब्रज का रूप है वो भी दिखाएं, ये तो इस लीला का रूप है। तो महाप्रभु ने उनकी इच्छा पूरी की और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन कराया। क्या दर्शन कराया? चैतन्य महाप्रभु ने जब दर्शन कराया, वो दर्शन कराते ही क्या हुआ, रामानंद राय मूर्छित हो गए। विशाखा सखी मूर्छित नहीं हुई ब्रज लीला में, लेकिन यहां रामानंद राय मूर्छित हो गए। क्या कारण है इसका? तो कारण सुनिए, कारण यह है कि रामानंद राय ने क्या देखा जो उन्होंने ब्रज लीला में नहीं देखा। तो श्रील गौर गोविंद महाराज बड़ा अच्छा उदाहरण देते समझाते हैं, उन्होंने ये समझाया, वो समझा रहे हैं कि चंद्रमा को देखा, रामानंद राय ने चंद्रमा को देखा और रामानंद राय ने चंपक फूल को देखा। चंपक फूल जो है सायंकाल में बंद हो जाता है जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, और कुछ समय के बाद वो चंपक फूल बंद हो जाता है। तो क्या देखा उन्होंने? चंद्रमा को देखा, चंद्रमा की किरणों को देखा, चंपक फूल को देखा, और साथ में चंपक फूल में चंद्रमा की किरणों को प्रवेश करते हुए देखा। ये रामानंद राय ने देखा। लेकिन विशाखा सखी ने क्या देखा नहीं? विशाखा सखी ने क्या नहीं देखा? उन्होंने, विशाखा सखी ने उन किरणों को प्रवेश करते हुए नहीं देखा, उन्होंने केवल चंद्रमा को देखा। विशाखा सखी ने केवल चंद्रमा को देखा, विशाखा सखी ने चंपक फूल को बंद होते हुए देखा, यानी कि जो बंद हुआ हुआ जो चंपक फूल है, बंद हुआ हुआ जो चंपक फूल है उसको देखा केवल विशाखा सखी ने, और चंद्रमा को देखा। लेकिन किस तरह चंद्रमा की किरणें चंपक फूल में प्रवेश कर रही हैं वो नहीं देखा विशाखा सखी ने, वो किसने देखा? रामानंद राय ने देखा। ये देखकर रामानंद राय मूर्छित हो गए। तो ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब श्री कृष्ण ने सोचा कि श्रीमती राधारानी का ये महाभाव क्या है, ये प्रेम क्या है, उसके जानने की इच्छा प्रकट हुई, और श्रीमती राधारानी का हृदय जब पिघला, उनका मान भंग हुआ और उनका महाभाव, उनका हृदय जब पिघला, जब शायद ठंड के मौसम में जम जाता है, गर्मी के मौसम में पिघल जाता है, तो जब महाभाव, वो मादनाख्य महाभाव जब पिघलने लगा, तो उस समय क्या किया कृष्ण ने? मौका ढूंढा और फिर से क्या की? एक और चोरी की। उन्होंने क्या किया? श्रीमती राधारानी के महाभाव को चुराने का प्रयास किया, चुराया उसकी, और जब चुराया उस मादनाख्य महाभाव को चुराया, तो क्या हुआ? कृष्ण का रंग जो है वो काले से क्या हो गया? गोरांग रंग का हो गया। जैसा आपका भाव होगा वैसे आपका शरीर का रंग भी होगा। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, है कि नहीं? आम जब कच्चा होता है तो हरा होता है, आम जब पका हुआ होता है तो पीला हो जाता है, है कि नहीं? तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु जब बहुत बहुत देर तक जो है अपनी टुड्डी को दीवारों से रगड़ते थे गंभीरा में, तो कई बार तो भक्त लोग देखते थे उस गौरांग रूप के पीछे श्याम वर्ण भी छुपा हुआ है। श्री कृष्ण ने श्रीमती राधारानी के भाव और कांति दोनों को स्वीकार किया, इसलिए गौरांगी क्या बन गई? गौरांग बन गए। वो गौरांगी है और ये गौरांग है, तब तक कांचन गौरांगी, यह है तब तक कांचन गौरांग, है ना? ये तप्तन कांच, तप्त कांचन के लिए प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा ट्रांसलेट किया, मॉल्टन गोल्ड, मॉल्टन गोल्ड। प्रभुपा जी के गुरु भाई थे श्रीधर महाराज, वो चैतन्य महाप्रभु कहते थे गोल्डन वॉल्केनो, गोल्डन वॉल्केनो। तो वॉल्केनो क्या होता है, जब गोल्डन ज्वालामुखी स्वर्ण जैसा लगता है, तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल वही है। तो फिर ये जो चाहे चैतन्य महाप्रभु के आने का मुख्य कारण, तो श्रीमती राधारानी के प्रेम की महिमा को समझना चाहते थे कृष्ण, लेकिन नहीं समझ पा रहे थे। चुरा तो लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। आपकी डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अब इसको कैसे समझा जाए, ऐसे समझा जाए। आपकी डायरी में आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने आपकी डायरी चुरा ली क्यों, मुझे कल एग्जाम की तैयारी करनी है, उससे आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, मेरे पास वो नोट्स नहीं है, है ना। कल सीए का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, अक्षय केशव के पास बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैंने नोट्स चुरा ली। लेकिन नोट्स तो चुरा लिए, लेकिन जैसे ही किताब खोली, डायरी खोली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ तो लिया लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। जब तक अक्षय केशव प्रभु हमें नहीं बताएंगे, तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। इसलिए केवल चोरी करना ही पर्याप्त नहीं है, जिसका है धन उसे जानना होगा कि धन का मूल्य क्या है, है कि नहीं। इसलिए अगर मान लो भिखारी, अगर वो अगर करोड़ों रुपये अपराध भी कर ले, लेकिन वो जानता नहीं है कि धन को खर्चा कैसे किया जाए। हो सकता है कि वो उस पैसे से, उस धन से वो सोने की कटोरी खरीद ले भीख मांगने के लिए। तो इसलिए निमाई पंडित के नाम से जाने गए नवदीप में। चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित बने हैं, ब्राह्मणों का मजाक उड़ा रहे हैं। अद्वैत आचार्य ने पुकार की, ये एक और गौण कारण है। शांतिपुर में गंगा जल से, तुलसी दल से शालिग्राम को अर्पित किया। अद्वैत भवन जो नवदीप में है, वहां भी सेवा करते थे, निरंतर प्रार्थना करते थे, हुंकार भरते थे कि कब आएंगे आप, नवदीप में प्रकट होइए। ये क्या हो गया नवदीप वासियों को, चंडी काली की पूजा कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति में लिप्त हैं, अगर आप नहीं प्रकट हुए तो मेरे पास केवल एक ही उपाय रहेगा कि मुझे अपना सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा और संहार कर दूंगा इन सबका एक साथ। अद्वैत आचार्य बहुत क्रोधित थे, लेकिन तो हम क्या बता रहे थे,
आप बता रहे थे कि निमाई पंडित बन गए।
हाँ, तो अद्वैत आचार्य ने क्या देखा, शची माता के घर से जन्म भी हो गया, निमाय बड़े भी हो गए हैं, लेकिन ये तो ब्राह्मणों का मजाक उड़ा रहे हैं और अपना पांडित्य प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी विद्वत्ता का प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं। नवदीप में ब्राह्मणों का भट्टाचार्य, बंदोपाध्याय, चक्रवर्ती नाम के जो ब्राह्मण हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं निमाय पंडित, उनसे तर्क कर रहे हैं, उनको शास्त्रार्थ में परास करते हैं। परास करने के बाद फिर उसके बाद क्या करते हैं, उन्हीं की बात को सही साबित करते हैं, सही साबित करने के बाद फिर से गलत साबित कर देते हैं। तो ब्राह्मण लोग बेचारे हाय हाय करके भाग जाते थे, और यहां तक कि वैश्य भी, गदाधर पंडित, मुकुंदत, ये भी दूर से देखकर निमाय पंडित को भाग जाते थे, ये आएगा मजाक करेगा, है ना, तो अच्छा है कि इससे दूर रहा जाए, कौन इससे बात करेगा। क्योंकि निमाय पंडित अभी स्वरूप दामोदर, रामन राय और गदाधर पंडित की पाठशाला में भर्ती नहीं हुए, वो गंगादास पंडित की पाठशाला में तो भर्ती हो गए, और स्वयं भी अपने घर पे या मुकुंद संजय के घर पे आंगन में उन्होंने पाठशाला तो खोली, लेकिन अभी तक स्वरूप दामोदर, रामन राय और गदाधर पंडित की पाठशाला में वो भर्ती नहीं हुए, और इस कारण से श्रीमती राधारानी के भाव को नहीं समझ पाए थे। थोड़ा थोड़ा लक्षण प्रकट हो रहा था कभी कभी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। हालांकि नवदीप की सारी लीलाएं मधुर लीलाएं हैं, और नवदीप की जो लीला है उसको मधुर लीला कहा जाता है, औदार्य रस, औदार्य रस और माधुर्य रस, शायद बोतल में भी है, शायद बोतल से बाहर भी टपक रहा है। चींटियां आती हैं जो बाहर शायद टपकता है उसका आस्वादन करती हैं, और धीरे धीरे बोतल के अंदर घुस जाती हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमने तो ढक्कन से इतना कस के बंद किया था, बोतल को इतना कस के बंद किया था, ये चींटियां अंदर कैसे चले गई, ये चींटे अंदर कैसे चले गए मोटे मोटे, और शहद में तैर रहे हैं और अब थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके मर जाएंगे। नवदीप मंडल परिक्रमा में जो टंकी से पानी गिरता है और भक्त लोग देखते हैं कि टंकी से अब ओवरफ्लो कर रहा है, पानी ओवरफ्लो कर रहा है, तो उत्साहित होकर आनंदित होकर स्नान करने के लिए भागते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, उसको कहते हैं औदारी रस, ओवरफ्लोइंग, मोस्ट बेनिफिसेंट, मोस्ट मैग्नानिमस। तो इसलिए वो जल बाहर निकलता है, जल टंकी के अंदर भी है, लेकिन जब वही जल जब बाहर आता है तो भक्तों को अधिक आनंद मिलता है, उसको कहते हैं औदारी रस। ये है गौरंग महाप्रभु, ये है गौरंग महाप्रभु। तो निमाय पंडित यानी कि पांडित्य अपना प्रकट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको अपने गुरु के पास जाने का मौका मिला और उनसे आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण की। श्रीपाद ईश्वर बुरी की कृपा से क्या हुआ, वो बीज जो है अंकुरित होने लगा श्रीपाद ईश्वरपुरी की कृपा से। तो इस तरह से धीरे धीरे वो श्रीमती राधारानी के भावों को समझने का प्रयास कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का मतलब क्या है? चैतन्य महाप्रभु का मतलब है फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्रीमती राधारानी का भाव प्रकट कर रहे हैं, श्रीमती राधारानी फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, सो दैट इज चैतन्य महाप्रभु। तो राधा रानी ने विचार किया, इन्होंने मेरे भाव की चोरी तो कर ली और कांति भी स्वीकार कर ली, भाव का आश्रय भी ले लिया और कांति भी स्वीकार कर ली, लेकिन ये मेरे भाव को समझ नहीं पाएंगे, तो इसको समझाने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ेगा। और फिर श्रीमती राधारानी फिर गदाधर पंडित के रूप में आए, और गदाधर पंडित जो है फिर क्या करते हैं, नवदीप में ही शची माता के कहने पर हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ लगे रहते हैं, क्योंकि जब श्रीपाद ईश्वरपुरी से गया से मिलने गया में जाने के बाद और गया से आने के बाद क्या हुआ उनका हाल, वो भाव में कीर्तन करते, भाव में नृत्य करते, अपने आप को संभाल नहीं पाते, यहाँ की वहाँ उनका पाठशाला भी जाना भी जो है वहाँ पर केवल कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने हेतु होता, और कभी कभी तो निमाय पंडित लगातार 9 घंटे कृष्ण कथा करते, और 9 घंटे कृष्ण कथा करने के बाद अपने विद्यार्थियों से पूछते, समझ में आया आज का विषय? तो विद्यार्थी बोलते, आपने तो आज के विषय के बारे में कुछ कहा ही नहीं। बोलते ठीक है मैं प्रयास करूंगा। तो इस तरह से जब ऐसा बहुत अधिक होने लगा तो गंगादास पंडित ने कहा कि देखिए मैं भी भक्त हूं कृष्ण का, आपके पिता जगन्नाथ मिश्र भी भक्त हैं, हम सब कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब पाठशाले आते हैं तो यहां पे अपने कर्तव्य को तो पूरा करना है, यहां तो कम से कम आप अपने विद्यार्थियों के साथ क्या करो, उनके साथ उनको आप पढ़ाओ, उनको शिक्षा दो, संस्कृत व्याकरण सिखाओ उनको, उनको धातुओं का वर्णन करो। विद्यार्थी भी पूछते, वो कहते सारे धातु और सारे अक्षर ये सब श्याम सुंदर कृष्ण के ही व्यक्तित्व है, वही इसके मूल कारण है सभी धातु के, ही इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द रूट्स ऑल द वर्ब्स। तो ऐसा कहते फिर एक दिन निमाय पंडित ने प्रयास किया, ठीक है कहां है वो बंदोपाध्याय चक्रवर्ती और जितने भी यहां पर ब्राह्मण हैं, लाओ मेरे सामने, एक एक उस शास्त्रार्थ में हराता हूं मैं, कोई टिक नहीं पाएगा मेरे सामने। तो ऐसा वो कहते हैं और पास में निकट में रत्नगर्भ आचार्य जो है श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे होते हैं, और जैसे रत्नगर्भ आचार्य के द्वारा कहे जो श्लोक है भागवत के जो श्लोक है वो सुनते निमाय पंडित, और सुनते ही क्या होता, फिर से भाव की दशा में जाते और भूल जाते कि क्या उन्होंने बोला था। फिर जब बहुत ज्यादा होने लगा तो फिर उन्होंने अपने विद्यार्थियों को कहा कि बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता हूं, आज के बाद पाठशाला बंद, आप सबको जहां जाना है जिस पाठशाला में भर्ती होना है जाइए, आप सब आजाद हैं। तो विद्यार्थी बोलते नहीं, विद्यार्थी बोलते आपने कृष्ण भक्ति का कुछ वर्णन किया, हमें भी थोड़ा बहुत आनंद तो आया है, ये कृष्ण भक्ति की कैसे जाती है, कैसे शुरुआत करें हम भी, ये तो बताओ निमाय, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो निमाय पंडित बोलते हैं ठीक है आज हम लोग हरिनाम संकीर्तन करेंगे, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। और पहली बार नवदीप में निमाय ने पहली बार हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन किया। और जो ये हरिनाम संकीर्तन है, हरि हराय नमः, ये पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने गाया गंगा जी के तट पर। और सब भक्तों को करताल दिया, मित्रों को करताल दिया और सिखाया उनको करताल कैसे बजाना है और किस तरह से ऊर्ध्वबाहु होकर उच्च स्वर से हरि नाम का उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपने भाव की दशा प्रस्तुत कर रहे थे, क्योंकि अब वो श्रीपाद ईश्वरपुरी से मिल चुके थे। तो शची माता ने कहा, किसको कहा? गदाधर पंडित को कहा, ये तो अर्च्य विग्रह की सेवा करता है तो उसका पूरा कपड़ा भीग जाता है, और कभी किस दशा में होता है पता नहीं। मेरी ये प्रार्थना है तुमसे कि तुम छाया की तरह हमेशा इसके साथ में रहो, कभी इसको छोड़ना नहीं। गदाधर पंडित को शची माता आदेश से, गदाधर पंडित कहते हैं कि हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए तो आया हूं। मैंने छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, फिर कहां से इनको शिक्षा मिलेगी। तो गदाधर पंडित इसलिए हमेशा पीछे लगे रहते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत जगन्नाथपुरी भी चले जाते हैं तो वहां भी गदाधर पंडित पहुंच जाते हैं। और प्रत्येक दिन चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ जाते हैं, वहां पर गदाधर पंडित से प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत सुनते हैं। हाँ, ये भागवत का चौथा स्कंद भी सुनते हैं, सातवां स्कंद भी सुनते हैं और दशम स्कंद भी सुनते हैं। तो गदाधर पंडित कौन है? स्वयं श्रीमती राधारानी है। श्रीमती राधारानी से श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के समक्ष होते थे तो उस समय कृष्ण के भाव में होते थे। तो ये है गौर गदाधर। जब गौर गदाधर को आप देखते हैं तो वो राधा कृष्ण ही है। और गौर निताई कौन है? वो है कृष्ण बलराम। गौर निताई की कृपा से गौर गदाधर की कृपा मिलती है ना। तो इस प्रकार ये आने का जो है कारण है, मुख्य कारण है। और इस प्रकार धीरे 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 जब गदाधर पंडित नम्र भाव से, या मान प्रकट नहीं किया गदाधर पंडित ने, गौर लीला में गदाधर पंडित ने मान प्रकट नहीं किया जिस तरह वो राधारानी के रूप में ब्रज लीला में मान प्रकट करते हैं। राधारानी मान प्रकट करती है लेकिन यहां उन्होंने मान प्रकट नहीं किया, क्योंकि अगर मान प्रकट करेंगे तो फिर सेवा कैसे होगी। इसलिए गदाधर पंडित बड़ी नम्रता से, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि गदाधर पंडित के बारे में वर्णन करते हुए जगन्नाथपुरी में कि रुक्मिणी जी का जो दक्षिण भाव है उसको स्वीकार किया था। रुक्मिणी जी भी इसलिए बताया है, इसलिए नहीं कि वो रुक्मिणी जी के अवतार हैं, इसलिए है कि रुक्मिणी का जो भाव है दक्षिण भाव, सबमिसिव मोड, सबॉर्डिनेट मोड, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। और गदाधर पंडित के रूप में वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भाव में सेवा करते थे, दास्य भाव में सेवा करते थे, उनकी सहायता करते थे। गंभीरा में भी स्वरूप दामोदर और रामानंद राय जो है निरंतर जो है वो क्या करते थे? निरंतर चैतन्य महाप्रभु का सहयोग देते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उस समय विप्रलंब भाव, जो विरह का भाव है, वो प्रकट कर रहे थे। भक्तों से प्रार्थना है कि आप सभी आगे आगे आ जाए, पीछे भक्त लोग बैठना चाह रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है। तो दो स्थान हैं, जगन्नाथपुरी और नवदीप धाम। जगन्नाथपुरी है क्षेत्र धाम, विप्रलंब तट जिसको कहते हैं, साधकों के लिए सबसे उत्तम स्थान जगन्नाथपुरी, क्योंकि यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु विरह प्रकट कर रहे हैं श्रीमती राधारानी के भाव में। जगन्नाथ जी का दर्शन करके, जगन्नाथ जी का दर्शन किया ही कि मूर्छित हो गए। पहली बार जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथ मंदिर में गए, तो इससे पहले कि बलदेव जी और सुभद्रा जी का दर्शन करते, चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए। जगन्नाथ जी का दर्शन करने मात्र से ही मूर्छित हो गए, क्योंकि उन्होंने श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन किया और वो दर्शन हो करते ही मूर्छित हो गए। वियोग विरह प्रकट हो रहा था, सामने कृष्ण होते भी विरह प्रकट हो रहा है, यानी कि जितनी भी विरह की सीमाएं हैं वो सारी पार कर दी। दिव्य उन्माद, ट्रांसेंडेंटल मैडनेस, जो किसने देखा? उद्धव जी ने देखा जब वो ब्रज में गए. भगवान कृष्ण ने कहा मेरा संदेश दे दो, जाकर बता दो कि मैं जल आऊंगा. उद्धव जी ने सोचा कि ज्ञान की बातें करेंगे वहां पर और सबको शिक्षा देकर आऊंगा. बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव जी. और ब्रज में जाकर जब देखा, ब्रजवासियों का हाल देखा और विशेष रूप से जब गोपियों का हाल देखा तो हैरान हो गए, हक्के बक्के हो गए. ये क्या है, ये कैसा प्रेम है, अटूट प्रेम है. मैंने सोचा था कि मैं ही बहुत निकट हूं कृष्ण के, लेकिन कि तो मैं आगे पीछे भी नहीं हूं. और विशेष रूप से जब देखा श्रीमती राधारानी को कि वो किससे बात कर रही है, भ्रमर से बात कर रही है. और भ्रमर से बात कर रही है, दिव्य उन्माद, उन्माद प्रकट कर रही है, एक पागलपन प्रकट कर रही है. वही पागलपन जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया जगन्नाथपुरी में, क्योंकि कृष्ण ब्रज छोड़ के चले गए थे. इस कारण से श्रीमती राधारानी पागल से हो गई थी, दिव्य उन्माद प्रकट कर रही थी विरह के कारण. तो ये चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया. चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिखाया, वो एक भक्त रूप में आए थे. भक्त रूप में आकर उन्होंने दिखाया कि भक्ति की सर्वोच्च सीमा क्या है, इससे आगे और भक्ति कोई नहीं कर सकता जो श्रीमती राधारानी कर रहे हैं. श्रीमती राधारानी की महिमा को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं. इसलिए हम भक्तों को गौड़िया वैष्णव कहा जाता है. श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर अमृतवाणी जो पुस्तक है उसमें लिखा है, जो विष्णु के भक्त हैं वो वैष्णव होते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं वो कार्ष्णेय होते हैं, जो श्रीमती राधारानी की सेवा करते हैं उनके भक्त होते हैं वो गौड़िया होते हैं. इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो राधारानी की सेवा करो, उनको प्रसन्न करो. अगर वो मूर्ख को भी रेकमेंड कर देंगे तो कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ेगा. तो ये कुछ गुह्यतम बातें हैं जो सामान्य रूप से हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि सामान्य लोग उसको समझ भी नहीं पाएंगे और सामान्य जनता के सामने ये बोलने लायक है भी नहीं, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, पात्रता की आवश्यकता है. गौरगंध महाराज एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया और समझने का है इसको. बोलते महाप्रभु तो कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, लेकिन आपके हृदय के अंतकरण में जो पात्र है उसमें छेद ही छेद है. जैसे ही कृष्ण प्रेम टपकता है वो छेद से बाहर निकल जाता है. इसलिए जो हृदय का जो पात्र है उसमें छेद नहीं होना चाहिए, अपने को पात्र बनाना पड़ेगा, अपने को योग्य बनाना पड़ेगा. जब तक हमारे पास अधिकार नहीं होगा हम लोग इसको नहीं संभाल पाएंगे. जैसे मान लीजिए बहुत हल्का प्लास्टिक का ग्लास है, पतला सा ग्लास आता है और उसमें गरम गरम खोलता हुआ घी डाल दें आप, तो क्या होगा, फट जाता है, क्योंकि वो पात्र नहीं है. इसलिए पात्रता की आवश्यकता पड़ती है, अधिकार की आवश्यकता पड़ती है. इसलिए हम रोज प्रत्येक दिन प्रार्थना करते हैं तुलसी महारानी से, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी. अधिकार के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, अधिकार के लिए सेवा करनी पड़ती है गुरु की, अधिकार के लिए वैश्यों की सेवा करनी पड़ती है, अधिकार के लिए गुरु के आंदोलन में साथ देना होता है, तभी अधिकार प्राप्त होता है. केवल किताब पढ़ने से, ग्रंथों को पढ़ने से या इसकी चर्चा करने से ये अधिकार नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये कृपा जो है गुरु कृपा से प्राप्त होती है. इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा. जितनी भी आशाएं हैं वो सारी पूरी होंगी जिसकी रति होती है गुरु के चरणों में. या कहने का अर्थ है जो श्री गुरु की सेवा करता है, जो श्री के प्रतिनिधि है, इसलिए उनको श्री गुरु कहा जाता है. उनकी जो सेवा करता है तो क्या होता है, रति जागृत होती है. भाव का दूसरा अर्थ है, दूसरा शब्द है रति. भाव मतलब कृष्ण प्रेम जागृत होता है और सारी आशाएं पूरी हो जाती हैं, फिर और कोई आशा करने की आवश्यकता नहीं है. इसलिए यह सबसे बड़ा रहस्य है, यह सबसे बड़ा रहस्य है. और इस रहस्य को भूलकर कोई अन्य रास्ता अपनाता है, अन्य मार्ग अपनाता है, वो मार्ग से भटक जाता है. इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, हमारा एक ही मार्ग है जो कि रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया है. हमारी पद्धति है रूप सनातन पद्धति, रूप रघुनाथ पद्धति, षड गोस्वामी के द्वारा जो दिया गया है वो हमारी पद्धति है, हम उस परंपरा में आते हैं, और हमारा जो साधना है, हमारी जो साधना है, हमारा जो साध्य है, वो हमें प्राप्त होता है जब हम इस परंपरा में रहकर इसको करते हैं। ये नहीं कि कोई पिक एंड चूज फिलॉसफी नहीं है ये, कि आज मैं जगन्नाथ मिश्र के घर पे नहीं जाऊंगा, है ना, मैं तो अंतर्द्वीप में रहूंगा। अपने आप ही मेंटल प्लेटफॉर्म में, मानसिक धरातल पर खुद ही हम चुनाव करने लगते हैं कि मैं इधर रहूंगा, मैं ये सुनूंगा, मैं ये सुनने जाऊंगा, क्योंकि इन सब के लिए क्या चाहिए, अधिकार की आवश्यकता पड़ती है, और अधिकार प्राप्त होता है गुरु कृपा से। और इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं प्रादुर्भवेत क्रमः, प्रादुर्भवेत क्रमः, इसका मतलब यह है कि यह क्रमशाही विकास होगा, क्रमशाही विकास होगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी लीला में दिखा रहे हैं, जन्म लेते ही उन्होंने श्रीमती राधारानी का महाभाव प्रकट नहीं किया, नहीं प्रकट किया ना, तो वो भी दिखा रहे हैं। तो इसी तरह से जब तक हम लोग साधना में परिपक्व नहीं होंगे गुरु की सेवा करते हुए, तब तक हमें अधिकार ये प्राप्त नहीं होने वाला है, वो लोभ नहीं प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है इस बात को समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अब यहां पर जो बताया जा रहा है, अंत लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब थे, गंभीरा में थे, तो उनकी क्या हालत हुई थी ये आप सुनिए। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, इससे पहले ही बताएं, जगन्नाथपुरी हम बता रहे थे विप्रलंब क्षेत्र है, विप्रलंब क्षेत्र एक साधक के लिए स्थान, क्योंकि साधक की प्रगति का मूल्यांकन होता है कि कितना उसको विरह महसूस हो रहा है, सेपरेशन फील हो रहा है कृष्ण से। अगर हमें कृष्ण से कोई सेपरेशन फील नहीं हो रहा है, भक्तों से कोई सेपरेशन फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या भक्तों के संग में आकर माया से सेपरेशन फील हो रहा है, होता है कि नहीं, इसका मतलब अभी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रभुपाद ने एक लेक्चर में बोला है कि ये हमारा उन्नति का जो है मूल्यांकन कैसे होगा, वो इस तरह से होगा कि हम लोग कितना विरह महसूस कर रहे हैं कृष्ण से, उनके धाम से, उनकी लीलाओं से, उनके रूप से, उनके नाम से। हरि नाम लेते हैं तो हमें भौतिक विषय वस्तु का चिंतन होता है, हरि नाम लेते हैं तो विषय वस्तुओं से विरह होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अकेले बैठ के जप करते हैं, निर्जन भजन करते हैं, लेकिन विषयों का चिंतन करते हैं, क्योंकि विषयों से विरह क्यों हो रहा है, क्योंकि विषय से आसक्ति है। जिससे आसक्ति होगी उसी से विरह होगा, जिससे आकर्षण होता है उसी से विरह होता है, और जितना अधिक विरह होगा उतनी संभावना होती है मिलन की। और जितना कम विरह होता है उतनी कम संभावना होती है मिलन की, यानी कि वो भक्त ही केवल धाम जाएंगे जिनका विरह जो है वो उमड़ पड़ा है, विरह की बाढ़ आ गई है हृदय में कृष्ण से, उनके नामों से, उनके रूप से, उनकी लीलाओं से, उनके धाम से, उनके परिकरों से, उनके पार्षदों से। जब विरह महसूस होता है या विरह बढ़ता जाता है दिन प्रतिदिन, इसका मतलब क्या है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कृष्ण की ओर। प्रभुपाद की किताब का नाम क्या है, ऑन द वे टू कृष्णा। तो ये कोई नए लोगों के लिए किताब नहीं है, ये नए लोगों के लिए भी है लेकिन पुराने लोगों के लिए भी है। प्रभुपाद की प्रत्येक पुस्तक जो है वो नए लोगों के लिए भी है, प्रभुपाद की प्रत्येक पुस्तक पुराने लोगों के लिए भी है, यह हम साबित कर देते हैं। जैसे प्रभुपाद प्रारंभिक किताबों में लिखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल लाइफ, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज सिमिलैरिटी, द सिमिलैरिटी इज दैट ईटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग दे आर सिमिलर एक्टिविटीज ऑफ एन एनिमल एज वेल एज अ ह्यूमन बीइंग, है कि नहीं। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं जब तक ये चार कार्यों से हम लोग मुक्त नहीं हो जाते हैं, या ये चार आवश्यकताएं हमारी समाप्त नहीं हो जाती हैं, या समाप्त नहीं हो रही होती हैं, इसका मतलब अभी भी हम देहात्मक बुद्धि में हैं। प्रभुपाद इन पुस्तकों के माध्यम से ये बता रहे हैं, लेकिन प्रारंभ में जो व्यक्ति है वो जो इस किताब को पढ़ेगा तो उसको केवल यही समझ में आएगा डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। लेकिन जो स्पिरिचुअली एडवांस कर रहे हैं वो श्लोक को कैसे लेंगे, निद्राहार विहार कादि विचितो चात्यंत दीनो चयो, है कि नहीं। षड गोस्वामी अष्टकम में क्या बोला श्रीनिवास आचार्य ने कि षड गोस्वामियों ने निद्रा और हार के ऊपर विजय पाली। कोई सोचेगा निद्रा और हार के ऊपर विजय पाने का मतलब है मनुष्य जीवन, नहीं। निद्राहार और भय मैथुन के ऊपर जो विजय पाता है वास्तव में वो देहादम बुद्धि से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि उसकी आसक्ति अब कृष्ण से हो गई है, उसका मन उसका चित्त जो है भगवान के चरणों में लग चुका है, इसलिए उसको देह की आवश्यकताओं के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं, सुदबुद्ध नहीं। उसको यही नहीं पता है कि देह के साथ क्या हो रहा है। अभी जब हम सीधा मायापुर में थे, हे सुलन जयपताका महाराज को हमने देखा, क्योंकि महाराज को हाल ही में जो पैरालिसिस का अटैक हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, लेकिन महाराज को देखकर हम सब हैरान हुए। ये तो बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट था, है ना। ये नहीं कि हम चेतन चरितामृत ग्रंथ पढ़ रहे हैं तभी समझ में आएगा। आज भी इस समय भी आज के समय भी ऐसे भक्त हैं, हमारी संस्था में ऐसे भक्त हैं जिनको आप देख सकते हैं कि कितना प्रेम है उनको कृष्ण से, महाप्रभु से। इतने रोग होने के बावजूद भी, इतना मतलब भयानक ब्रेन स्ट्रोक होने के बावजूद भी, पैरालिसिस होने के बावजूद भी महाराज प्रवचन दे रहे हैं, महाराज हरिनाम ले रहे हैं और महाराज दीक्षा भी देने वाले हैं और महाराज धाम परिक्रमा पहले दो दिन भी आए थे लेकिन व्हीलचेयर में आए थे। और जब महाराज बोल रहे थे कई भक्तों ने अनुभव किया कि वास्तव में ऐसा लग रहा है कि महाराज बिल्कुल शरीर से बिल्कुल अलग हो गए हैं, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे हुए हैं, देह से उनका कोई मतलब नहीं है, केवल देह को एक जरिया बना है कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए। पुणे यात्रा में गए थे महाराज भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और पुणे यात्रा में करीब 5000 भक्त आए थे। तो महाराज ने जब सुना तो उनकी इतनी इच्छा हुई, उन्होंने कहा मुझे ले चलो पुणे, मैं देखना चाहता हूँ, भक्तों का दर्शन करना चाहता हूँ। और उनको एम्बुलेंस में बिठा के लेके गए और महाराज एम्बुलेंस में गए, पुणे में गए, वहाँ एक घंटा प्रवचन दिया, भक्तों से मिले और फिर वापस आए। ये आज के समय हो रहा है, ये है हाल ही में हुई घटना, ये है लाइव टेलीकास्ट। ये नहीं कि 500 साल पहले ही ऐसी घटनाएं होती थी, या आज हरिनाम में इतनी शक्ति नहीं है, आज भी इतनी शक्ति है। यहां पर भक्तिनाथ ठाकुर ने क्या बोला, भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला कि नित्यानंद प्रभु हालांकि नाम का वितरण कर रहे हैं, उन्हें नाम हट भी खोल लिया है, सब कुछ शुद्ध नाम देना चाहते हैं, लेकिन इसका एक मूल्य है, श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन भक्ति का मूल आधार है, श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार है, और यही श्रद्धा जब परिपक्व हो जाता है तो उसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। मोबाइल बंद रखिए प्लीज। तो यहां पर हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की क्या हालत हुई जगन्नाथपुरी में, आप सुनिएगा। तो यहां पर हम केवल जो अंग्रेजी में लिखा है उसको हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद के जो शब्द हैं वो आप प्रत्यक्ष ही सुने तो अच्छा लगेगा आपको। तो इस चैप्टर का नाम है लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महापुरुष इमोशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल मैडनेस इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा इज वेरी डीप एंड मिस्टीरियस। इवन दो वन इज वेरी एडवांस एंड लर्नड, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो हमें बता रहे थे कि जगन्नाथपुरी में महापुरुष ने क्या दिखाया, सेपरेशन दिखाया, और ये दिखाया कि किस तरह से एक भक्त को किस तरह से विरह महसूस होना चाहिए कृष्ण से, अगर वास्तव में भक्ति से आगे बढ़ रहा है। और जब मिलन का समय होता है तो नवदीप धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। नवदीप धाम है मिलन का स्थान, जिस तरह से राधा कृष्ण की अष्टकाली लीला होती है उसी तरह से गौर सुंदर की भी अष्टकाली लीला होती है। आठों प्रहर में गौर सुंदर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं और नवदीप नहीं छोड़ते हैं, गौर सुंदर नवदीप कभी नहीं छोड़ते हैं। सनत कुमार सविता में क्या लिखा है, वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। नारद मुनि ने पूछा अब क्या करें, एक बात से दूसरी बात में चले गए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझना इसको। नारद मुनि ने पूछा सनत कुमार से, उन्होंने पूछा कि ऐसा हमने सुना है कि वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं रखते हैं कृष्ण, लेकिन हमने तो देखा है कि वो तो मथुरा गए, फिर बाद में द्वारका गए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया, श्रीमती राधारानी भी तो आप कहते हैं कि वृंदावन छोड़कर नहीं जाती हैं, वो भी तो चली गई मथुरा, फिर उसके बाद वो कुरुक्षेत्र भी गई, ये समझ में नहीं आया। तो फिर सनत कुमार समझाते हैं, बोलते हैं कि राधारानी जो हैं वो भी अपना विस्तार करती हैं जिस तरह से कृष्ण अपना विस्तार करते हैं। तो जो मूल कृष्ण हैं, जो श्याम सुंदर कृष्ण हैं, जो ब्रज के रहने वाले कृष्ण हैं, जो रसराज श्री कृष्ण हैं, वो ब्रज छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। और जो श्रीमती राधारानी जो मूल राधा हैं, जिनको टेक्निकली कहा जाता है काम राधा, वो भी ब्रज छोड़कर नहीं जाते हैं। तो इनकी जो लीलाएं होती हैं अष्ट प्रहर में, अष्टयाम लीला जिसको कहते हैं, आठ प्रहर की जो लीलाएं होती हैं, ये इन दोनों के मध्य में होती हैं। और जो वृंदावन छोड़ के जाते हैं कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, वही कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, वही कृष्ण अपना विस्तार करते हैं वासुदेव कृष्ण के रूप में, और फिर मथुरा जाते हैं, बाद में द्वारका जाते हैं द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में। इस तरह से विस्तार होता है। उसी तरह से श्रीमती राधारानी भी अपना विस्तार करती हैं। श्रीमती राधारानी जब कृष्ण के जाने पर द्वादश वनों में भटकती हैं, बारह वनों में भटकती हैं राधारानी, तो श्रीमती राधारानी जो है भटक रही हैं, तो फिर अष्टकाली लीला कैसे होगा, कोई ये भी प्रश्न कर सकता है। आप तो कहते हैं कि अष्टकाली लीला होती है, हर प्रहर में राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, हमने तो ये भी सुना है कि राधारानी तो द्वादश वनों में भटक रही थी। वो जो राधारानी भटकती हैं द्वादश वनों में, वो मूल राधारानी की एक्सपेंशन है, विस्तार है, जिनको कहा जाता है टेक्निकली वियोगनी राधा, वियोगनी राधा। और फिर वही श्रीमती राधारानी मूल राधारानी जो है अपना विस्तार करती हैं और कुरुक्षेत्र जाती हैं और वहां पर कृष्ण का दर्शन करती हैं और कहती हैं कि मैं वही राधा हूं, आप वही कृष्ण हैं, लेकिन क्या कारण है मुझे यहां रहकर वृंदावन का स्मरण हो रहा है, यमुना जी का स्मरण हो रहा है, और आपका ये राजवेश तो ठीक नहीं लग रहा है देखने में, क्योंकि द्वारकाधीश के रूप में आप प्रकट हो रहे थे। तो वो राधारानी कौन है जो कुरुक्षेत्र में जाके मिलती है, वो है समयोगिनी राधारानी। अब इसको आप कनेक्ट करिए गौरलीला से, गौरलीला में कैसे समझे इसको। तो जो नवदीप के जो निमाय है, जिनकी हम सेवा आराधना पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, जो हमारे ऑल्टर में विराजमान है, वो है नवदीप के निमाय, जो नवदीप को कभी नहीं छोड़ते हैं, जिनके केश हैं, जो मधुर मधुर बातें करते हैं, जो ब्राह्मणों का मजाक उड़ाते हैं, अपने मित्रों के साथ गंगा जी में जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ आनंद लेते हैं, कृष्ण कथा का आस्वादन करते हैं, संकीर्तन का आनंद लेते हैं, शिवास पंडित के घर पे संकीर्तन चलता रहता है अपने गोहितम पार्षदों के साथ, तो ये कौन है, ये है नवदीप के निमाय। इनकी अष्ट प्रहर लीला होती है। जगन्नाथपुरी में अष्ट प्रहर लीला नहीं होती है, जगन्नाथपुरी में अष्ट प्रहर लीला नहीं होती है, वहां पर भी कुछ स्थानों में वृंदावन प्रकट है, लेकिन वहां अष्ट प्रहर लीला नहीं होती। अष्ट प्रहर लीला होती है नवदीप में। तो नवदीप में प्रवेश करने के लिए हमें साधना करनी होगी, किस तरह से, जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया। विरह जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी कि संभावना हमारी है कि जल्द ही मिलन होने वाला है नवदीप के निमाय से। अब सुन रहे इस बात को, तो नवदीप के जो निमाय है, उस समय जो भाव प्रकट किया जा रहा है श्रीमती राधारानी का, वो है मूल राधारानी का। और जब चैतन्य महाप्रभु यानी निमाय पंडित संन्यास ले लेते हैं, कठुआ जाके संन्यास ले लेते हैं, और उसके बाद 6 साल के लिए यात्रा करते हैं, दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं, वृंदावन की यात्रा करते हैं, और साथ में कीर्तन करते हैं, कृष्णा 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 हे बोले,
कृष्णा 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा हे
कृष्णा 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 कृष्णा
कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्षमा कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाही मा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मा कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्षमा
है वियोगिनी राधा रानी, यह है वियोगिनी राधा रानी जो पूरे भारतवर्ष में दक्षिण भारत में विशेष रूप से वृंदावन जाकर जो है विरह प्रकट कर रहे हैं और कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। और वही श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जाते हैं जो कुरुक्षेत्र से अभिन्न है द्वारका से अभिन्न है और जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं वह है समयोगिनी राधा रानी जब वो जगन्नाथ जी के सामने प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार लेकिन जगन्नाथपुरी में जब गंभीरा में होते हैं तो वहां पर वह भी प्रकट करते हैं जिस तरह से वियोगिनी राधारानी प्रकट करते हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं। तो ये मूल रहस्य ये है तत्व गौर तत्व जिसको कहते हैं कि गौरंग महाप्रभु जब आए हैं तो ये दिखा रहे हैं कृष्ण से विरह दिखा रहे हैं। अब ये जो अध्याय है इसमें देखिए कि किस तरह चैतन्य महाप्रभु ने विरह प्रकट किया। श्री चैतन्य महाप्रभु इमोशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल मैडनेस इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा इज वेरी डीप एंड मिस्टीरियस। Even though one is very advanced and learned, he cannot understand it. How can one describe unfathomable subject matters? It is possible only if Sri Chaitanya Mahaprabhu gives him capability. Swarup Damodar Goswami and Raghunath Das Goswami recorded all these transcendental activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu in their notebooks. In those days, Swarup Damodar and Raghunath Das Goswami lived with Sri Chaitanya Mahaprabhu, whereas all commentators lived far away from him. These two great personalities, Swarup Damodar and Raghunath Das Goswami, recorded the activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu moment by moment. They described these activities briefly as well as elaborately in their notebooks. Swarup Damodar wrote short notes where Raghunath Das Goswami wrote elaborate descriptions. I shall now describe Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities more elaborately as if fluffing out compressed cotton. Please hear faithfully the description of Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic emotion. Thus, you will come to know of his ecstatic love and ultimately you will achieve love of Godhead. Harivar. When Sri Chaitanya Mahaprabhu felt separation from Krishna, his condition exactly corresponded to that of the gopis in Vrindavan after Krishna's departure from Mathura. The lamentation of Srimati Radharani when Uddhav visited Vrindavan gradually became a feature of Sri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental madness. Sri Chaitanya Mahaprabhu's emotion exactly corresponded to those of Srimati Radharani when she met Uddhav. The Lord always conceived of himself in a position and sometimes thought that he was Srimati Radharani herself. Such is the state of transcendental madness. Why is it difficult to understand? When one is highly elevated in love of Krishna, he becomes transcendently mad and talks like a madman. Jab Krishna Prem mein bada chada ho jata hai, to wo pagal ho jata hai. तो हम सबको क्या होना है? पागल होना है, लेकिन कृष्ण प्रेम में, संसार के लिए नहीं। जैसे कृष्ण प्रेम के लिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है वही प्रोसेस जो है भौतिक जगत में प्रकट होता है विकृत रूप में। ये कहां मिलता है, इसकी सूचना कहां मिलती है? शास्त्र प्रमाण भगवत गीता में दूसरा अध्याय 62वां श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संजात संजायते कामात्, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसको पागल कहते हैं। तो कहां से शुरू होता है? जब हम विषयों के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वहां से शुरुआत होती है, वहां से हम इच्छा प्रकट करते हैं, तो क्या होता है फिर? इच्छा प्रकट होती है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, अपने पर क्रोध आता है या दूसरे पर क्रोध आता है, और इस क्रोध से मोह प्रकट होता है, और उसके बाद स्मृति जाने लगती है, याददाश्त जाने लगती है, उसके बाद बुद्धि नष्ट हो जाती है, व्यक्ति पागल हो जाता है, उसको हॉस्पिटल भेज देते हैं। और वो हॉस्पिटल क्या है? ये भौतिक जगत है। इसे प्रभुपाद कहते हैं एनीबॉडी हू इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस इज मैड। तो वास्तव में ये संसार पागलखाना है। दिस मेटीरियल वर्ल्ड इज अ लुनेटिक एसाइलम। यहां पर पागल लोगों को भेजा जाता है ना, जो पागल कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थे माया तारे झपटिया धोरे। तो कृष्ण को जो भूलना चाहते हैं, भूलने की इच्छा करते हैं, माया झपट लेती है और वो पागल हो जाते हैं। उन सब पागलों को इस संसार में भेज दिया जाता है, और सब पागल क्या करते हैं? मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं रशियन हूं, मैं जापानीज हूं, मैं चाइनीज हूं, मैं तुम पाकिस्तानी हो, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं तो मुसलमान हो, मारो 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 मारो। सो दिस इज कॉल्ड मैडनेस, मेटीरियल मैडनेस। जनस्य मोहो अयम अहम अमे महेति, श्रीमद भागवत में लिखा है जनस्य मोहो अयम अहम अमेति, मैं और मेरा, तू और तेरा, माया का है घेरा। और हम सब लटक रहे हैं जगत में। तो ये पागलपन है इस संसार का। लेकिन असली पागलपन ये है जो चैतन्य महापुरुष ने दिखाया। पागल तो होना ही पड़ेगा, या तो कृष्ण के लिए पागल हो या संसार के लिए, कौन सा अच्छा बताइए? क्योंकि उस पागल में, पागलपन में भी आनंद ही आनंद है। उस पागलपन में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि वो पागलपन जो है बढ़ता रहता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम सर्वात्मस्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। पागलपन क्या है? आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनाम मरमहताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ अस्तु सैव नापरा। यह है पागलपन। आप तो मेरे प्राणनाथ हैं ही, है ना, आप तो प्राणनाथ हैं ही, आप दर्शननाथ देकर मरमहत करें, आप तो लंपट कुछ भी कर सकते हैं, आप गाड़ी आलिंगन भी कर सकते हैं, कुछ भी करें आप, लेकिन आप तो मेरे प्राणनाथ बने ही रहेंगे, इसको कहते हैं पागलपन। तो ये शिक्षाष्टकम स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा अपने हाथों से, जो कि भक्तों के लिए, साधुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस शिक्षाष्टकम को आधार बनाते हुए ठाकुर भक्ति उन्होंने नए भजन रहस्य लिखा। तो यहां पर ये बताया है किस तरह से दिव्य उन्माद में थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु की हालत के बारे में और भी वर्णन प्राप्त होता है। श्रीमती राधा रानी जब किसी को देखती हैं तो केवल कटाक्ष, कटाक्ष ही उनकी पड़ती है। श्रीमती राधा रानी की कटाक्ष ही पड़ती है। श्रीमती राधा रानी कभी सीधे नहीं देखती हैं। जब गोपियों को देखती हैं कटाक्ष, कृष्ण को देखती हैं कटाक्ष, और यहां तक कि घर में भी जितने भी ब्रजवासी हैं उनको भी कटाक्ष के रूप में ही देखती हैं। एक बार कृष्ण की बड़ी उत्कट लालसा हुई, उन्होंने प्रार्थना की राधा रानी से, एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं, कटाक्ष के रूप में नहीं। श्रीमती राधा रानी ने सोचा ये मुझे देखना तो चाहते हैं लेकिन ये देख पाएंगे क्या, ये अपने को संभाल पाएंगे क्या। तो जब कृष्ण ने इस प्रकार इच्छा प्रकट की श्रीमती राधा रानी को इस तरह देखने की, तो वो है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में। तो यहां पर बताएंगे कृष्णदास किरदार गोस्वामी कि चैतन्य महाप्रभु की क्या हालत हो रही है। इस माधना के भाव का आस्वादन करते ही कृष्ण की क्या हालत हो रही है और क्या दशा हुई उनकी जब उन्होंने इस प्रकार की इच्छा प्रकट की है। सच इज द स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल मैडनेस व्हाई इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन वन इज हाईली एलिवेटेड इन लव ऑफ कृष्णा ही बिकम्स ट्रांसेंडेंटली मैड एंड टॉक्स लाइक ए मैड मैन व्हेन द एक्स्टैटिक इमोशन ऑफ एनचैंटमेंट ग्रेजुअली प्रोग्रेसेस इट बिकम्स सिमिलर टू बिवल्डरमेंट देन वन रीचेस द स्टेज ऑफ एस्टॉनिशमेंट व्हिच अवेकन्स ट्रांसेंडेंटल मैडनेस उद्घूर्णा एंड चित्र जल्पा आर टू अमंग द मेनी डिविजन ऑफ ट्रांसेंडेंटल मैडनेस। ये बड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको सुन लीजिए बस, ये समझने के लिए नहीं है। वन डे व्हाइल ही वाज रेस्टिंग श्री चैतन्य महाप्रभु ड्रीम ही सॉ कृष्णा परफॉर्मिंग हिज लास्ट डांस। श्री चैतन्य महाप्रभु सॉ लॉर्ड कृष्णा स्टैंडिंग विद हिज ब्यूटीफुल बॉडी कवर्ड इन थ्री प्लेसेस होल्डिंग हिज फ्लूट टू हिज लिप्स वेयरिंग येलो गारमेंट्स एंड गार्लैंड्स ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर्स ही वाज एनचैंटिंग इवन द क्यूपिड इवन टू क्यूपिड द गोपीज वर डांसिंग इन अ सर्कल एंड द मिडल ऑफ दैट सर्कल कृष्णा द सन ऑफ महारानंद डांस विद राधारानी। Seeing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu was overwhelmed with the transcendental mellow of the Ras dance and he thought, now I am with Krishna in Vrindavan. When Govind saw that the Lord had not yet risen, he awakened him, understanding that he had only been dreaming, the Lord was somewhat unhappy. Sri Chaitanya Mahaprabhu performed his customary daily duties and at the usual time, he went to see Lord Jagannath in temple. As he viewed Lord Jagannath from behind the Garuda column, hundreds and thousands of people in front of him were seeing the deity. Suddenly, a woman from Odisha, unable to see Lord Jagannath because of the crowd, climbed the column of Garuda, placing her foot on Sri Chaitanya Mahaprabhu's shoulder. तो जगन्नाथ की दर्शन करने की इच्छा हुई, एक औरत आई वहाँ पर ओडिशा से, तो उत्कट लालसा हुई और गरुड़ जी के स्तंभ के पास खड़े थे चैतन्य महाप्रभु, उनके कंधे पर चढ़ गई, कंधे पर अपना पांव रख दिया। When he saw this, Sri Chaitanya Mahaprabhu's personal servant Govind hastily got it down from her position. Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, chastised him for this. Sri Chaitanya Mahaprabhu said to Govind, O Adivasi uncivilized man, do not forbid this woman to climb the Garuda's thumb. Let her see Lord Jagannath to her satisfaction. When the woman came to her senses, however, she quickly climbed back down to the ground and seeing Sri Chaitanya Mahaprabhu, immediately begged at his lotus feet for forgiveness. Seeing the woman's eagerness, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Lord Jagannath has not bestowed so much eagerness upon me. Chaitanya Mahaprabhu कह रहे, जो तुम्हारे हृदय में उत्कट लालसा है जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, मेरे अंदर तो नहीं है, मैं तो कभी ऐसे चढ़ा नहीं किसी के कंधे पर। She has fully absorbed her body, mind, is life in Lord Jagannath. Therefore, she was unaware that she was putting her foot on my shoulder. Alas, how fortunate this woman is. I pray at her feet that she favor me with great eagerness to see Lord Jagannath. Just previously, Sri Chaitanya Mahaprabhu had been seeing Lord Jagannath as Krishna, the son of Maharanand in person. Becoming fully absorbed in that vision, Sri Chaitanya Mahaprabhu had assumed the mood of the gopis, so much so that everywhere he looked, he saw Krishna standing with his flute to his lips. After seeing the woman, Lord's external consciousness returned and he saw the original deity forms of Lord Jagannath, Subhadra and Lord Balaram. When he saw the deities, Lord Chaitanya thought he was seeing Krishna in Kurukshetra. He wondered, have I come to Kurukshetra? Where is Vrindavan? Thakur Bhakti Nod ne ek baar apna bhav prakat kiya. Unne kaha ki main ja raha hu Kurukshetra mein bhajan kutir banane ke liye Brahma Sarovar ke paas. To Srila Bhakti Siddhanta se Thakur ne suna to aashcharyachakit ho gaye. Unne kaha Bhakti Nod Thakur inko ye to mere pita hain. ये तो वृंदावन को जाना चाहिए, नवदी में रहना चाहिए, ये कुरुक्षेत्र में जाने की इच्छा कैसे प्रकट हो गई अचानक इनकी? तो कुरुक्षेत्र में क्यों भजन कुटीर बनाना चाह रहे हैं भक्तिनो ठाकुर? क्योंकि वहां जब श्रीमती राधारानी पहुंची, वहां जब गोपियां पहुंची, उन्होंने जब देखा, श्रीमती राधारानी देखा कृष्ण को राजवेश में, ऐश्वर्य में, रत्नों से जड़ी सिंहासन यानी कि रथ पे बैठे थे और इतने सारे सेवक, इतने सारे सैनिक, ऐश्वर्य देखकर श्रीमती राधारानी को ठीक नहीं लगा। वो कहने लगी कि कहाँ है वृंदावन, कहाँ है वो यमुना, मैं वही राधा हूं, आप वही कृष्ण हैं। तो ये है राधा पार्थ सारथी, हमारे राधा पार्थ सारथी ये है। तो इसको कहते हैं सर्विस नेसेसिटी। भक्त ठाकुर ने क्या भाव प्रकट किया? सर्विस नेसेसिटी। सेवा की जहां आवश्यकता है, अगर आप वहां जाते हैं, उस सेवा का मूल्य होता है, उस सेवा का महत्व होता है। कई बार भक्तों को गुरु भेज देते हैं, गुरुदेव कहते हैं जाओ झुमरी तलैया में प्रीचिंग सेंटर खोलो, वहां भक्तों का संग कहां मिलेगा गुरुदेव, वहां मैं किससे सुनूंगा, कहां होगा वहां वृंदावन, कहां होगा वहां मायापुर। लेकिन वहां पर सेवा की आवश्यकता है। तो जब ऐसे में शिष्य ऐसी सेवा को स्वीकार कर लेता है और ऐसी सेवा को करने के लिए उस स्थान में जाता है, तो उस भक्त को गुरु की पूरी कृपा मिलती है, पूरा आशीर्वाद मिलता है। गुरु हृदय से उसको दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं। किसी के घर में आग लग जाती है, वो व्यक्ति चिल्ला रहा है आग आग आग, और आप बचाने चले जाते हैं, तो व्यक्ति आपको कितना धन्यवाद देगा, क्योंकि वहां पर उस समय उस सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि घर में आग लगी हुई है, घर में आग लगी हुई है। कोई व्यक्ति बीमार है, चिल्ला रहा है दर्द के कारण, उसको रोग है, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, आप जाते हैं उसकी सहायता करने के लिए, आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, आप उसको अस्पताल ले जाते हैं, आप उसको दवाई देते हैं, खुराक देते हैं, आपको कितना हितेशी समझेगा वो अपना, आपको जन्म जन्मांतर के लिए वो धन्यवाद देगा। इसको कहते हैं सर्विस नेसेसिटी, सेवा की आवश्यकता। राधारानी विरह महसूस कर रही है कृष्ण का दर्शन करने पर भी उनको वो आनंद नहीं आ रहा है, सेपरेशन फील कर रही है कृष्ण के सामने भी, श्रीमती राधारानी कुरुक्षेत्र में। और गोपियां क्या कर रही हैं, पैसिफाई कर रही हैं, सांत्वना दे रही हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर सोच रहे हैं, उन्हें क्या विचार किया, ये मौका है श्रीमती राधारानी की सेवा करने का, सबसे उत्तम मौका है, क्योंकि अभी श्रीमती राधारानी सेवा लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गोपियां वहां पर सेवा कर रही हैं। और भक्तिनाथ ठाकुर ने सोचा कि ये सबसे उत्तम समय है श्रीमती राधारानी की सेवा करने के लिए, इसलिए तुरंत जो है क्या भक्तिनाथ ठाकुर कहां जाना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं, वहां भजन कुटीर बनाने के लिए। इसलिए श्री श्री राधा पारसार्थी के जितने भक्त हैं वो बड़े भाग्यशाली है। यहां पे ललिता जी भी हैं, विशाखा जी भी हैं श्रीमती राधारानी के साथ, और कृष्ण भी हैं, और साथ में गुरु परंपरा भी है, सारे भक्त भी हैं। कितनी सेवा की आवश्यकता है यहां पर भक्तों की, तो राधा पारसार्थी को छोड़ के मत जाइए कहीं। यहां है आपका भजन कुटीर, यही आपके लिए है मायापुर, यही है आपके लिए वृंदावन, यही आपके लिए जगन्नाथपुरी है, सब कुछ तो है म्यूजियम में। तो गुरु ने आपको बिल्कुल सही स्थान दिया है साधना का। हाँ, ये साधन भजन का उत्तम स्थान है श्री श्री राधा पारसार्थी मंदिर, इसको समझने का प्रयास करें। तो यहां पर ये सेपरेशन फील कर रहे हैं श्री चैतन्य महापुरुष, कह रहे हैं हैव आई कम टू कुरुक्षेत्र, वेयर इज वृंदावन। लॉर्ड चैतन्य गुरु वेरी मच एजिटेटेड लाइक अ पर्सन हु हैज जस्ट लॉस्ट अ रिसेंटली एक्वायर्ड ज्वेल, देन ही बिकेम वेरी मोरोस एंड रिटर्न होम। श्री चैतन्य महापुरुष सैट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगैन टू मार्क इट विद हिज फिंगर नेल्स, अपने नाखून से जमीन को खरोदने लगे। ही वॉज ब्लाइंडेड बाय टीयर्स विच फ्लोड फ्रॉम हिज आईज लाइक द गैंजेस, जैसे पिचकारी से जब जल निकलता है तो कैसे निकलता है, इस तरह से उनकी आंखों से जैसे गंगा जी निकल रही हो, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। टीयर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हिज आईज लाइक द गैंजेस। श्री चैतन्य महाप्रभु सेड आई फाउंड कृष्ण द लॉर्ड ऑफ वृंदावन बट आई हैव लॉस्ट हिम अगेन, हु हैज टेकन माय कृष्ण वेयर आई हैव कम। व्हेन श्री चैतन्य महाप्रभु ड्रीम्ड ऑफ द रास डांस ही वॉज फुली अब्सॉर्ब्ड इन ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, बट व्हेन हिज ड्रीम ब्रोक ही थॉट He had lost a precious jewel. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu chant and dance always absorbed in the bliss of transcendental madness. He carried out the necessities of the body such as eating and bathing merely out of habit. तो यही होता है, जब प्रेम बढ़ता है कृष्ण से आपका, तो फिर आप खाना सोना अपने आप छोड़ देंगे, अपने आप छोड़ देंगे। ये नहीं आप सोचेंगे कि खाऊं या नहीं खाऊं, आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपका कृष्ण से आकर्षण है। शरीर की आवश्यकताएं हो गई समाप्त, आप तो आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यही है भक्ति। भक्ति का मतलब है जब हम आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो आत्माओं की जब आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो देह की आवश्यकताएं अपने आप कम हो जाती हैं। यह अंतर है, यह भेद है मनुष्य जीवन और पशु जीवन में। एट नाइट लॉर्ड चैतन्य वुड रिवील टू स्वरूप दामोदर एंड रावण राय द एक्स्टैटिक फीलिंग्स ऑफ हिज माइंड। श्री चैतन्य महाप्रभु सेड At first, my mind somehow achieved the treasure of Krishna, but it again lost him.
Therefore, it gave up my body and home because of lamentation and accepted the religious principle of a Kapalika yogi. Then my mind went to Vrindavan with its disciples, my senses. Having lost his acquired gem, Sri Chaitanya Mahaprabhu became overwhelmed with lamentation by remembering its attributes. Then grasping the necks of Raman Rai and Swarup Damodar Goswami, he cried, "Alas, where is my Lord Hari? Where is Hari?" Finally became restless and lost all patience. "My dear friends," he said, "please hear of Krishna's sweetness. Because of great desire for that sweetness, my mind has given up all social and Vedic religious principle and taken to the profession of begging exactly like a mystic yogi." तो यही कृष्ण बोल रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज. तो the ring of Krishna's Ras Lila manufactured by Shukadev Goswami, the most auspicious cracksman, is as pure as an earring made from a conch shell. The yogi of my mind is wearing that earring upon his ear. From a god he has carved out the bowl of my aspirations and he has taken the bag of my expectations on his shoulder. The yogi of my mind wears a torn quilt of anxiety on his dirty body which is covered with dust and ashes. His only words are, "Alas, Krishna." He wears 12 bangles of distress on his wrist and a turban of greed on his head. Because he has not eaten anything, he is very thin. The great yogi of my mind always studies the poetry and discussions of Lord Krishna's Vrindavan pastimes. In Srimad Bhagavatam and other scriptures, great saintly yogis like Vyasadeva and Shukadeva Goswami have described Lord Krishna as a super soul beyond all material contamination. This is called Rasabhas. The mystic yogi of my mind has assumed the name Mahabahul and made disciples of my 10 senses. Thus my mind has gone to Vrindavan, leaving aside the home of my body and the great treasure of material enjoyment. In Vrindavan, he goes from door to door begging alms with all his disciples. He begs from both the moving and inert inhabitants, the cities and the trees and the creepers. In this way, he lives on fruits, roots and leaves. The gopis of Braj Bhumi always taste the nectar of Krishna's attributes, his beauty, his sweetness, his aroma, the sound of his flute and the touch of his body. My mind's 5 disciples, the senses of perception, gather the remnants of that nectar from the gopis and bring them to the yogi of my mind. The senses maintain their lives by eating those remnants. So, in indriyon ka bhojan yahi hai. There is a solitary garden where Krishna enjoys his pastimes, and one corner of pavilion in that garden, the yogi of my mind, along with his disciples, practices mystic yoga. Wanting to see Krishna directly, this yogi remains awake throughout the night, meditating on Krishna as the super soul and contaminated by the 3 modes of material nature. When my mind lost the association of Krishna and could no longer see him, he became depressed and took up mystic yoga. In the void of separation from Krishna, he experienced 10 transcendental transformations. Agitated by these transformations, my mind fled, leaving my body, his place of residence, empty. Thus I am completely in trance. When the gopis felt separation from Krishna, they experienced 10 kinds of bodily transformation. These same symptoms appeared in the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो जब विरह होता है, उत्कट विरह होता है कृष्ण से, तो 10 लक्षण प्रकट होते हैं जो गोपियों ने प्रकट किया, और वही लक्षण जो है श्री चैतन्य महाप्रभु यहां प्रकट कर रहे हैं. द 10 बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा आर एंग्जाइटी, वेकफुलनेस, मेंटल एजिटेशन, थिननेस, अनक्लीननेस, टॉकिंग लाइक ए मैड मैन, डिजीज, मैडनेस, इल्यूजन एंड डेथ. श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज ओवरवेल्म्ड विद नाइट एंड डे बाय दिस 10 एक्स्टैटिक कंडीशन. व्हेनेवर सच सिम्टम्स अरोज, हिज माइंड बिकेम अनस्टडी. After speaking this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu fell silent. Then Raman Rai began to recite various verses. Raman Rai recited verses from Srimad Bhagavatam and Swarup Damodar Goswami sang of Krishna's pastime. In this way, they brought Sri Chaitanya Mahaprabhu to external consciousness. After half the night had passed in this way, Raman Rai and Swarup Damodar Goswami made Sri Chaitanya Mahaprabhu lie down in his bed in the inner room. Then Raman Rai returned home and Swarup Damodar Goswami and Govind lay down in front of the door to Sri Chaitanya Mahaprabhu's room. Sri Chaitanya Mahaprabhu remained awake throughout the entire night, chanting the Hare Krishna Mahamantra very loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Krishna.
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो प्रभुपाद कहते हैं, क्या कहते हैं इस हरे कृष्णा कीर्तन धुन में जो आप लोगों ने पहली बार सुना था, प्रभुपाद क्या कहते हैं? क्या बोला प्रभुपाद ने? कौन बताएगा? दिस ट्रांसलेटेड साउंड वाइब्रेशन इज अ जेन्युइन, क्या बोला प्रभुपाद ने? जेन्युइन क्राई ऑफ द चाइल्ड फॉर द मदर हरा, जेन्युइन क्राई ऑफ द चाइल्ड। यानी जब हरिनाम लेते हैं तो हमारे हृदय में क्रंदन होना चाहिए, हमारे हृदय में विरह प्रकट होना चाहिए कृष्ण से। एंड दैट क्राई मस्ट बी जेन्युइन, नॉट साहिज्या। साहिज्या लोग भी आंसू बहाते हरिनाम लेते हुए, सो दैट क्राइंग इज नॉट क्राइंग। श्री चैतन्य महाप्रभु रिमेन अवेक थ्रू आउट द एंटायर नाइट चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र वेरी लाउडली। आफ्टर सम टाइम स्वरूप दामोदर कुड नो लॉन्गर हियर श्री चैतन्य महाप्रभु चैंटिंग। व्हेन ही एंटर्ड रूम ही फाउंड द थ्री डोर्स लॉक्ड, श्री चैतन्य महाप्रभु वाज गॉन। तो दरवाजे बंद थे गंभीरा के, दरवाजे बंद थे, किवाड़ बंद थे, तीन दरवाजे बंद थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मौजूद नहीं थे। स्वरूप दामोदर जब वापस आए उन्होंने देखा, all the devotees were anxious when they saw the Lord was not in his room. They wandered about searching for him with a warning lamp. After searching for some time, they came upon Sri Chaitanya Mahaprabhu lying in a corner by the northern side of Singhdwar gate. Singhdwar ke uttari disha mein, kuch samay ke baad, unhone kya dekha? Darwaje band the charo taraf se gambhira ke. Lekin kuch samay ke baad kya dekha unhone? सिंह द्वार के उत्तरी दिशा में चैतन्य महाप्रभु वहां पर उनको नजर आए। एट फर्स्ट दे वर ओवरजॉयड टू सी हिम, बट व्हेन दे सॉ हिज कंडीशन ऑल द डिवोटीज हेडेड बाय स्वरूप दामोदर गोस्वामी वेर वेरी एंग्शियस। श्री चैतन्य महाप्रभु वाज लाइंग अनकॉन्शियस एंड बॉडी हैड बिकम एलोंगेटेड टू 5 or 6 क्यूबिट्स। देर वॉज नो ब्रेथ फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल्स। चैतन्य महाप्रभु का शरीर और लंबा हो गया, पहले 7 फुट के थे वो, और लंबे हो गए। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु के शरीर में क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, सुन के घबराहट होगी। घबराहट हमें नहीं, इनको भी हो रही थी, इसलिए उनको महाप्रभु कहा जाता है। नवदीप में उनको निमाई कहा जाता है, गौर सुंदर कहा जाता है, गौर हरि कहा जाता है। मधुर मधुर लीलाएं हैं, आनंद आता है सुनकर, लेकिन यहां घबराहट हो रही थी। तो महाप्रभु कौन है? महा का मतलब है महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधारानी, और प्रभु का मतलब है रसराज श्री कृष्ण। जब एक हो जाते हैं तो वो है महाप्रभु। तो ईच ऑफ हिज आर्म्स एंड लेग्स हैड बिकम 3 cubits लॉन्ग, ओनली स्किन कनेक्टेड द सेपरेटेड जॉइंट्स। द लॉर्ड्स बॉडी टेम्परेचर इंडिकेटिंग लाइफ वॉज वेरी लो। ऑल द जॉइंट्स इन हिज आर्म्स लेग्स नेक एंड वेस्ट वर सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 6 inches। कितना कितना डिफरेंस था? 6 inches का डिफरेंस था जॉइंट्स में, आर्म्स में, लेग्स में, नेक में, वेस्ट में, इनके बीच में जो डिफरेंस कितना था? 6 inches का डिफरेंस था। कितना लंबा हो गया होगा उनका शरीर चैतन्य महाप्रभु का। इट अपियर दैट ओनली स्किन कवर्ड इज एलोंगेटेड जॉइंट्स। सीइंग द लॉर्ड्स कंडीशन ऑल द डिवोटीज वर वेरी अनहैप्पी। दे ऑलमोस्ट डाइड व्हेन दे सॉ श्री चैतन्य महाप्रभु विद माउथ फुल ऑफ सलाइवा। चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो है सलाइवा निकल रहा था, झाग निकल रही थी। एंड फोम एंड हिज आईज टर्न अपवर्ड, उनकी आंखें ऊपर चली गई। व्हेन दे सॉ द स्वरूप दामोदर गोस्वामी एंड ऑल द अदर डिवोटीज बिगन टू चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा वेरी लाउडली इनटू श्री चैतन्य महाप्रभु ईयर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। महाप्रभु एंड ही सडनली अरोज विद अ लाउड शॉट ऑफ हरी बोल हरी बोल हरी बोल। चैतन्य महाप्रभु जब जागे तो जोर से उच्च स्वर से उन्होंने हरी बोल करके उच्चारण किया। एज सून एज द लॉर्ड रिटर्न टू एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस all his joints contracted and his entire body returned to normal. Srila Raghunath Das Goswami described his pastime elaborated in his book Gaurang Sthav Kalpvriksh. In this house of Kashimish, Sri Chaitanya Mahaprabhu sometimes be greatly aggrieved, feeling separation from Krishna. The joints of transcendental body would slacken and his arms and legs would become elongated, rolling on the ground. The Lord would cry out in distress in a faltering voice and weep very sorrowfully. The appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu awakening in my heart maddens me. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very much astonished to find himself in front of Singh Dwar. He asked Swarup Damodar Goswami, "Where am I? What am I doing here?" Swarup Damodar said, "My dear Lord, please get up. Let us go to your place. There I shall tell you everything that has happened." Because Mahaprabhu nahi jante kya ho raha hai. Jab external consciousness mein aaye to bhul gaye ki kya hua. To Swarup Damodar bata rahe hain ki aap chaliye, main aapko batata hu ki kya hua. Thus all the devotees supporting Sri Chaitanya Mahaprabhu took him back to his residence. Then they all described to him what had happened. Hearing the description of his condition while he had lain near the Singh Dwar, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very much astonished. He said, "I do not remember any of these things. All I can remember is that I saw my Krishna, but only for an instant. He appeared before me and then like lightning immediately disappeared." Just then everyone heard the blowing of the conch shell at the Jagannath temple. Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately took his bath and went to see Lord Jagannath. Thus I have described the uncommon transformation of the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. When people hear about this, they are very much astonished. No one has witnessed such bodily changes elsewhere, nor has anyone read of them in the revealed scripture. Yet Sri Chaitanya Mahaprabhu, supreme sannyasi, exhibited these ecstatic symptoms. These ecstasies are not described in the Shastras, and they are inconceivable to common men. Therefore, people in general do not believe in them. Raghunath Das Goswami lived continuously with Sri Chaitanya Mahaprabhu. I am simply recording whatever I have heard from him. Although common men do not believe in this pastime, I believe in them totally. One day while Sri Chaitanya Mahaprabhu was going to see, to bathe, he suddenly saw a sand dune named Chatak Parvat. Chatak Parvat, Gopinath, Tota Gopinath ke bilkul saamne hai Chatak Parvat. Chaitanya Mahaprabhu mistook the sand dune for Govardhan Hill and ran toward it. Lord Chaitanya said, "Of all the devotees, this Govardhan Hill is the best. Oh my friend, this hill supplies Krishna and Balaram, as well as their calves, cows and cowherd friends with all kinds of necessities, water for drinking, very soft grass, caves, fruits, flowers and vegetables. In this way, the hill offers respect to the Lord. Being touched with the lotus feet of Krishna and Balaram, Govardhan Hill appears very jubilant." Reciting this verse, Sri Chaitanya Mahaprabhu ran toward the sand dune as fast as the wind. Govind ran after him, but he could not approach him. First one devotee shouted loudly, and then a tumultuous uproar arose as all the devotees stood up and began to run after the Lord. Swarup Damodar Goswami, Jagdanath Pandit, Gadadhar Pandit, Ramayana Pandit, Nandayan Shankar Pandit are some of the devotees who ran after Sri Chaitanya Mahaprabhu. Paramanand Puri, Brahmanand Bharati also went toward the beach, and Bhagavan Acharya was lame, followed them very slowly. Sri Chaitanya Mahaprabhu was running with the speed of wind, but he suddenly became stunned in ecstasy and lost all strength to proceed further. The flesh at each of his pores erupted like pimples. Ab kya dasha hui? Jab Giriraj ji ki taraf wo bhag rahe the aur bhakt log unka pisha kar rahe the, tab Chaitanya Mahaprabhu ki kya halat hui? Ye bata rahe hain. A flesh at each of his pores erected like pimples, and his bodily hairs standing on end appeared like kadamba flowers. Blood and perspiration flowed incessantly from every pore of his body, and he could not speak a word but simply produced a gargling sound within his throat. The Lord's eye filled and overflowed with unlimited tears like the Ganges and the Yamuna beating in the sea. His entire body faded to the color of a white conch shell and then began to quiver like the waves on the ocean. While quivering in this way, the Sri Chaitanya Mahaprabhu fell down on the ground. Then Govinda approached him. Govinda sprinkled water from a karang water pot all over the Lord's body, and then taking his own outer garment, he began to fan Sri Chaitanya Mahaprabhu. When Swarup Damodar Goswami and another devotee reached the spot and saw the condition of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they began to cry. All eight kinds of transcendental transformation were visible in the Lord's body. All the devotees were struck with wonder to see such a sight. the devotees loudly chanted the Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Near Sri Chaitanya Mahaprabhu and washed his body with cold water. After the devotees had been chanting for a long time, Sri Chaitanya Mahaprabhu suddenly stood up and shouted, Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! When Sri Chaitanya Mahaprabhu stood up, all the Vaishnavas loudly chanted, Hari Hari! In great jubilation, the auspicious sound filled the air in all directions. Astonished, Sri Chaitanya Mahaprabhu stood up and began looking here and there, trying to see something, but he could not catch sight of it. When Sri Chaitanya Mahaprabhu saw all the Vaishnavas, he returned to partial external consciousness and spoke to Swarup Damodar. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Who has brought me here from the Govardhan Hill? I was seeing Lord Krishna's pastimes, but now I cannot see him. Today I went from here to Govardhan Hill to find out if Krishna was tending his cows there. I saw Lord Krishna climbing Govardhan Hill and playing his flute surrounded on all sides by grazing cows. Hearing the vibration of Krishna's flute, Srimati Radharani and all her gopis, gopi friends came there to meet him. They were all very nicely dressed. When Krishna and Srimati Radharani entered a cave together, the other gopis asked me to pick up some flowers. Just then all of you made a tumultuous sound and carried me from there to this place. Why? Why have you brought me here, causing me unnecessary pain? I had a chance to see Krishna's pastime, but I could not see them. Saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu began to weep. When all the Vaishnavas saw the Lord's condition, they also wept. At that time, Paramananda Puri and Brahmananda Bharati arrived. Seeing them, Sri Chaitanya Mahaprabhu became somewhat respectful. Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to complete external consciousness and immediately offered prayers to them. Then these two elderly gentlemen both embraced the Lord with loving affection. Sri Chaitanya Mahaprabhu said to Puri Goswami and Brahmananda Bharati, Why have the two of you come so far? Puri Goswami replied, Just to see your dancing. When he heard this, Sri Chaitanya Mahaprabhu felt somewhat ashamed. Then he went to bathe in the sea with all the Vaishnavas. After bathing in the sea, Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to his residence with all the devotees. Then they all lunched on the remnants of food offered to Lord Jagannath. Thus, I have described the transcendental ecstatic emotions of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Even Lord Brahma cannot describe their influence. In his book, Gaurang Stav Kalpurek, Raghunath Das Goswami has very vividly described the Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastime of running towards the Chatak Parvat and dune. Near Jagannathpuri is a great sand dune known as Chatak Parvat. Seeing that hill, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Oh, I shall go to the land of Brush to see Govardhan Hill. Then he began running madly toward it, and all the Vaishnavas run after him. This scene awakens in my heart and maddens me. Who can properly describe all the uncommon pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu? They are all simply his play. I have briefly described them just to give an indication of his transcendental pastime. Nevertheless, anyone who hears this will certainly attain the shelter of Lord Krishna's lotus feet. Hari Bol! Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita following their footsteps. तो ये देखिए कितना सुंदर वर्णन किया शिला प्रभुपाद ने, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु ने जो ये विरह प्रकट किया, ये जो हालत आपने देखी चैतन्य महाप्रभु की जो हुई, ये हालत होगी या होती है जब कृष्ण श्रीमती राधारानी को देखना चाहते हैं. सो ही कैन नॉट विदस्टैंड द एक्सटेसी ऑफ श्रीमती राधारानी महाभाव. So this is the glory of Srimati Radharani's love for Krishna. That's what Sri Chaitanya Mahaprabhu is showing in this pastime. So that means, as a sadhak, we are supposed to feel separation from Krishna. Agar hame Krishna se virah nahi ho raha hai, to milan ki sambhavana nahi hai phir. Is jivan mein milan ki sambhavana nahi hai. So therefore, the acharyas in our parampara, they train the devotees to serve the Lord in separation. Sometimes devotees who are not matured enough, who are premature, they want to reside in Vrindavan. They want to reside in Mayapur. But they are not actually enough developed enough to feel that separation while staying in Vrindavan. So there is no question of Milan because there is no separation even though they are staying in Vrindavan. Because they have no separation for Krishna. They have no separation from Krishna. So there is no chance of meeting Krishna. So the acharyas, they engage the devotees in regulated devotional service. The sadhak jo hai, guru ki adesh anusar, seva karta hai, prachar karta hai, sadhana karta hai. Aur dham darshan ke liye jata hai, vapas lot aata hai. Aur nitya krishna katha sunta hai, sadhu sang karta hai. To aisa karne par dheere dheere kya hota hai? Vireh jagrat hota hai. Separation feel hona shuru ho jata hai. और जिस तरह से सेपरेशन फील होना शुरू हो जाता है इसका जब ग्रेजुअल प्रोग्रेस होने लगता है तो ये संभावना है तब संभावना होती है तब हम लोग आशा कर सकते हैं कि हाँ जीवन के अंत काल में हम निश्चित रूप से कृष्ण से मिलेंगे क्योंकि इसकी साधना जो है परिपक्व हो जाती है फिर तो फिर हम क्या करेंगे नवदीप धाम पहुंचेंगे और वहां जाकर निमाय पंडित की मधुर मधुर लीलाओं का आस्वादन करेंगे बोले निताई गौर प्रेमानंदे तो नवदीप में क्योंकि आप लोगों ने काफी विरह सुन लिया आप कुछ मिलन की भी बातें हों नवदीप में किस तरह से निमाय बाल लीलाएं करते थे समय कम है क्योंकि हमने 4 बजे का समय दिया था तो 20 मिनट केवल रह गए हैं तो इसमें कुछ बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे ताकि इतनी देर तो हम लोग घबराते रहे डर गए थे लेकिन हम लोग जब दर्शन करने जाएंगे मंदिर में तो वहाँ तो नवदीप के निमाय का दर्शन होगा है कि नहीं वहाँ तो संन्यास वेश नहीं देखेंगे चैतन्य महाप्रभु का वहाँ तो गौर निताय को नृत्य करते देखेंगे आनंद में हरी बोल हरी बोल हरी बोल तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु अनेकों लीलाएं करते हैं बाल लीलाएं जगन्नाथ मिश्र के घर में उनका जन्म हुआ बाल लीलाएं प्रारंभ की शची माता जगन्नाथ मिश्र देखकर हैरान रहते उनके चरणों को देखकर उनके कर कमल को देखकर रक्त के समान थे उनको डर लगता कि कहीं खून तो नहीं बह रहा है पांव से कहीं हाथ से रक्त तो नहीं बह रहा है लेकिन वास्तव में उनके कर कमल उनके चरण कमल ऐसे ही थे और कुछ समय के बाद वो क्या देखते जगन्नाथ मिश्र शची माता देखते कि पूरे घर में विष्णु के चरण चिन्ह नजर आ रहे हैं विष्णु के चरण चिन्ह पूरे घर में नजर आ रहे हैं बोलते हैं समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है निश्चित रूप से क्योंकि हम शालिग्राम शिला की सेवा करते हैं दामोदर शिला की सेवा करते हैं इसलिए हमसे ये प्रसन्न है शची शची आप जल्दी से इनके लिए गरम गरम खीर बनाओ आज हम उत्सव मनाएंगे स्वयं भगवान के चरण यहाँ पर पड़े हैं हमारे घर पर देखो चारों तरफ देखो कभी कभी जगन्नाथ मिश्र शची माता निमाय के निमाय जब चलते या निमाय दूसरे कक्ष में होते कमरे में होते तो नूपुर की आवाज़ सुनाई देती रुन झुन करके आवाज़ सुनाई देती बोलते हैं जगन्नाथ मिश्र शची माता से कहते हैं हमने तो कभी निमाय को नूपुर पहनाया नहीं इन ऊपर की आवाज कहां से आ रही है इन ऊपर की आवाज कहां से आ रही है जाके देखो निश्चित रूप से हमारे पर भगवान की अतिशय कृपा है लेकिन निमाय को कभी वो भगवान के रूप में देखते ही नहीं थे कि शची माँ कौन है माता यशोदा है जगन्नाथ मिश्र कौन है नंद महाराज हैं वो तो उनको हमेशा बाल रूप में देखते एक बार आंगन में निमाय जो है सांप के साथ खेल रहे हैं सांप के साथ खेलते खेलते पूरे शरीर में सांप को लपेट लिया और जगन्नाथ मिश्र ने निमाय को देखा शची माँ ने देखा और आसपास के पड़ोसी से माताओं ने भी आकर देखा तो घबरा गई अरे अरे सांप 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 गरुड़ 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 कहाँ हो सर पे देखो तो ऐसे करके पुकारने लगी शची माता जगन्नाथ मिश्र पुकारने लगे सर्प ने देखा कि अब जगन्नाथ मिश्र शची माता ये सब घबरा रहे हैं स्वयं अनंत शेष साक्षात अनंत शेष आए थे निमाय की सेवा करने के लिए, और निमाय बड़े आराम से लेटे हुए थे सर के ऊपर जैसे भगवान अनंत शेष के ऊपर लेटते हैं। लेकिन जब अनंत शेष यानी सर्प ने सोचा विचार किया कि जगन्नाथ मिश्र भयभीत हो रहे हैं, ये तो मैं लीलाओं में विघ्न डाल रहा हूं, मुझे यहां से जाना चाहिए, तो वो सर्प वहां से चला गया। दो चोर आए, उन्होंने निमाय को देखा, और ये बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहन रखे हैं इसने तो, बहुत सारे गहने हैं, बड़ा धनी लड़का है लगता है, उठा के ले जाओ इसको, चलो, उठा के ले गए, कंधे पर बिठा लिया। निमाय ने सोचा आज घूमूंगा मैं, आज घूमने का मौका मिला है मुझे, वैसे तो बाहर जा नहीं पाता मैं इतना, आज घूमूंगा खूब। तो चोरों के कंधे पर बैठकर निमाय घूम रहे हैं चारों तरफ नवद्वीप में, और हजारों की तादाद पर लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, और निमाय घूमे जा रहे हैं। लेकिन चोरों को भी नहीं पता चल रहा था, वो घूमते जा रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र के घर के बाहर आगे खड़े हो गए, यो माया का पर्दा उनके ऊपर गिरा हुआ था। बोलते हैं अब हम इसके सारे गहने निकालेंगे, अब हमें मौका मिला है। तो चोर अपने कंधे से निकालकर उसने निमाय को नीचे रखा, और जैसे ही रखा निमाय को नीचे, निमाय बड़ी तेजी से गए जगन्नाथ मिश्र के गोद में जाके बैठ गए। बोलते ये क्या हुआ, अरे ये तो अंदर भाग गया, जैसे ही उतारा अंदर भाग गया ये, तुम ये मेरे हाथ से गया, ओह ये कहीं वही स्थान तो नहीं है जहां से उसको उठाया था, भागो, कहीं वो हमें पकड़ लेंगे लोग। फिर वो बाद में शची माँ और उनके आसपास के जो पड़ोस से आए जो माताएं थी, उन्होंने चर्चा की जगन्नाथ मिश्र से कि पता नहीं कहाँ चला गया था, कहाँ चले गए तुम, निमाय कहाँ गए थे तुम, बस वो दो लोग आए थे मुझे कंधे पर बिठा के घुमा रहे थे, और घुमा कर फिर यहाँ छोड़ दिया, मैं घुमाया। तो लोग समझ नहीं पाए क्या हुआ क्या है, पता नहीं वो कौन थो लोग थे, लगता है बड़े पुण्य आत्मा होंगे वो, हमारे बालक को लाकर वापस यहाँ लौटा दिया, कहीं वो दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से हमको धन संपत्ति से उनको भर देंगे, उनको पुरस्कार देंगे। कहाँ पे होंगे वो लोग, वो तो चले गए। तो इस तरह से उन चोरों के ऊपर विशेष कृपा हुई। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं चैतन्य भागवत में कि उन चोरों के ऊपर विशेष कृपा की, चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा की, और अज्ञात सुकृति इकट्ठी की, उन्होंने अनजाने में निमाय की सेवा कर डाली उन चोरों ने, और उनको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। हरी वो। तो चैतन्य महाप्रभु अनेकों लीलाएं करते, बाल लीलाएं करते हैं, और कई लोगों को परेशान करते हैं। प्रत्येक दिन पाठशाला से आने के बाद गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए, और प्रातःकाल तो कुछ और ही कार्य करते हैं। ब्राह्मण लोग शौच क्रिया के लिए घर से निकलने लगते, क्योंकि उस समय जो है शौच का स्थान दूर होता था, गांव में अभी भी है, अटैच बाथरूम की प्रथा नहीं थी उस समय। तो चैतन्य महाप्रभु ने और निमाई ने, चैतन्य महाप्रभु ने या निमाई, और निमाई ने देखा कि ब्राह्मण लोग सुबह तैयारी कर रहे हैं, शौच क्रिया के लिए जाना चाहते हैं, बाहर से दरवाजा बंद कर दो, बाहर से खिड़कियां बंद कर दो, अब आएगा मजा। ब्राह्मण लोग कहने लगे खोलो दरवाजा खोलो, कौन है बाहर, ये जरूर निमाय की हरकत होगी। पेड़ पकड़ के बेचारे खड़े रहे, और निमाय अपने मित्रों के साथ हंस रहे बाहर। फिर बाद में जब पाठशाला से वापस लौटते तो सीधा फिर गंगा जी में जाते स्नान करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जब तक नवदी में थे, यानी कि निमाय नवदी में थे, तो प्रत्येक दिन गंगा जी में स्नान करने जाते, क्योंकि गंगा जी को ये वरदान मिला था। चैतन्य महाप्रभु ने वरदान दिया था गंगा जी को कि नवदीप में आप में और यमुना जी में कोई भेद नहीं है, और जो भी गंगा जी में स्नान करेगा उसका निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और प्रत्येक दिन निमाए प्रत्येक दिन पाठशाला से आने के बाद गंगा जी में स्नान करने जाते हैं प्रत्येक दिन। तो वहां पर विष्णु के लिए अर्पित करने वाली जो सामग्री है, भोग इत्यादि है, पूजा की सामग्री है, वो गंगा जी के तट पर रखी होती थी। निमाए क्या करते, विष्णु के आश्रम में जाकर बैठते और सारी पूजा की सामग्री और भोग स्वीकार कर लेते। ब्राह्मण देखते, अरे कहाँ गए पूजा का सामान, सामग्री का सामान, ये निमाई की हरकत है, जरूर निमाई की हरकत है, जरूर उसने किया होगा। और कभी कभी तो क्या करते, कुछ ब्राह्मण लोग गंगा जी के भीतर जाके गायत्री का समय होता तो गायत्री करते, गायत्री का समय हो गया है, खड़े खड़े गायत्री कर रहे हैं, अचानक किसी ने टांग पकड़ ली, अरे कहाँ है मगरमच्छ तो नहीं है। और निमाई क्या करते, गंगा जी के भीतर जाते और पांव खींचते थे, और ब्राह्मण लोग जो गायत्री कर रहे होते तो ब्राह्मण लोग बहुत परेशान थे। और यहां तक कि जो है जो माताएं थी, युवतियां थी जो, वो बहुत परेशान थी, रास्ता रोक लेते, विवाह का प्रस्ताव रखते निमाए, विवाह का प्रस्ताव रखते और बोलते, किसकी पूजा करने जा रहे हो, शिवजी की पूजा मेरी करो, मेरी पूजा करोगे तो लाभ पहुंचेगा, नहीं करोगे तो उससे विवाह होगा, ऐसे वृद्ध व्यक्ति से विवाह होगा जिसके पहले से 4 पत्नियां हैं, सोच लो। तो इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र को रोज कंप्लेंट आता ब्राह्मणों का, है ना। जगन्नाथ मिश्र सोचा कि आ तो छड़ी लेकर जाऊंगा मैं, उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा गंगा जी के तट पर, छोड़ूंगा नहीं आज मैं, आज को जरूर पीटूंगा मैं। तो जगन्नाथ मिश्र छड़ी लेकर गए और जो कन्याओं ने, युवतियों ने जो जगन्नाथ मिश्र को आगे कहा था कि इस तरह से करता है, हमसे आकर विवाह का प्रस्ताव करता है और इस तरह की बातें करता है तो आप कुछ कीजिए, तो वही कन्याएं जो हैं बाद में जगन्नाथ मिश्र को आगे कहते हैं, नहीं नहीं वास्तव में आप मत करिए, जो भी है आपका बालक है, छोड़ दीजिए उसको, छोटा है छोड़ दीजिए। बिल्कुल वैसे ही ब्रज में जिस तरह से गोपियां पहले तो शिकायत करती माता यशोदा को, बाद में हमेशा अच्छा प्रकट करती कि कब कृष्ण आएंगे हमारे घर में और माखन चोरी करेंगे। तो कई बार ऐसा करते कि अलग अलग घरों में जाकर निमाए अलग अलग सामग्री चुरा लेते, किसी के घर से माखन चुराते, किसी घर से दूध चुरा लेते, किसी घर से संदेश चुरा लेते, किसी घर से कुछ ना कुछ चुराते रहते। तो जब ऐसा कहा तो जगन्नाथ मिश्र का, नहीं नहीं मैं आज उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं आज आके देखूंगा। तो फिर ये क्या करते हैं, निमाए को बोलते हैं कि देखो जगन्नाथ मिश्र आपके पिता आपसे बहुत नाराज है, और गंगा जी के तट पर जाओगे तो रंगे हाथे पकड़े जाओगे आज। तो निमाए को सूचना मिल जाती है, तो आज पाठशाला से वहां से निकल जाते हैं और पाठशाला से गंगा जी की ओर नहीं जाते हैं, जगन्नाथ मिश्र गंगा जी के तट पर पहुंच जाते हैं और उनके मित्र वहां खड़े होते हैं, कहां है निमाए बताओ, आज की खैर नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको आज, वो तो आया ही नहीं, वो तो पाठशाला से आए नहीं आज स्नान करने के लिए, शायद घर गया होगा, घर से आ रहा होगा, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सब, सब मिले हुए हैं उसके साथ। तो बाद में जगन्नाथ मिश्र वापस आते हैं और जब घर वापस आते हैं तो सामने से निमाए को आता हुआ देखते हैं, बाल में और शरीर में कपड़ों में धूल जमी हुई है, स्याही लगी हुई है, इंक लगा हुआ है पूरे कपड़ों में, और निमाए जो है धीरे धीरे, है ना, डोलते हुए पहुंच रहे हैं, घर पे पहुंच रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो तुम, जगन्नाथ मिश्र पूछते हैं निमाए से, मैं तो पाठशाला से आ रहा हूँ, क्यों क्या हुआ, हाँ मुझे अभी स्नान के लिए जाना है, फिर आके प्रसाद ग्रहण करूंगा, कहाँ है माँ। तो इस तरह से जगन्नाथ मिश्र सोचते हैं ये क्या है, ये तो पाठशाला से आ रहा है। तो इस तरह से जगन्नाथ मिश्र और शची माता उनकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन बाद में ऐसा समय आ गया जब जगन्नाथ मिश्र बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचा कि अच्छा यही है कि इसकी पढ़ाई बंद कर दें, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ लिखा है इसलिए ऐसी हरकतें करता है, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाता है ना, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाता, क्योंकि विश्वरूप के संन्यास लेने के बाद, विश्वरूप के संन्यास लेने के बाद क्या हुआ कि निमाई पंडित बड़े गंभीर हो गए पढ़ाई में, पढ़ाई में बड़े गंभीर हो गए। लेकिन जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि वो कई बार ब्राह्मणों का मजाक भी उड़ाते हैं, तो लगता है ज़्यादा ज्ञान हो गया इसको, इसलिए अच्छा यही कि इसकी पढ़ाई बंद कर दो, पढ़ाई बंद कर दी। और पढ़ाई जब बंद की, घर में क्या देखा, एक दिन शची माता ने देखा कि वो छज्जे पर बैठे, ऊपर छत के ऊपर छज्जे पर बैठे हैं, और कहाँ बैठे, जहाँ पर जो बर्तन होते हैं, झूठे बर्तन होते हैं, वो रखे हुए हैं। शची माँ ने कहा कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो ऊपर, वहाँ तो झूठे बर्तन रखे हैं, इसके ऊपर कोई बैठता, तुम ब्राह्मण के लड़के हो और तुम वहाँ बैठे हो, तुम्हें इतनी भी सुध-बुध नहीं है। तो निमाई कहते हैं कि मैं क्या करूँ, आप लोगों ने मेरा स्कूल जाना ही बंद करा दिया, मुझे क्या पता क्या अच्छा होता है क्या गलत होता है। और रही बात यार झूठे होने की, अपवित्र स्थान तो है ही नहीं मेरे यहां बैठने, तो सारा ये स्थान ही पवित्र हो गया, ये स्थान तो अपवित्र रहा ही नहीं, ये सारा पवित्र हो गया। शची माता इस बात को समझ नहीं पाई, ये क्या कह रहा है, ये पवित्र कैसे हो गया स्थान। तो इस तरह से निमाई को नीचे उतारते हैं और फिर नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं शची माँ निमाई के लिए। विश्वरूप ने संन्यास ले लिया था, और संन्यास जब ग्रहण कर लिया तो निमाई भी जो है वो और गंभीर हो गए थे। तो लेकिन शची माता को हमेशा भय रहता था कि विश्वरूप ने संन्यास ले लिया है, अब निमाई भी कहीं संन्यास ना ले ले। वो रोने लगी, रोने लगी, रोते 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 वो सोचने लगी, क्योंकि विश्वरूप अद्वैत आचार्य का संग करते थे, विश्वरूप अद्वैत आचार्य के पास जाता था, रोज उनका सत्संग करता था, मुझे लगता है इसी कारण से हुआ है। और शची माता एकदम से रो पड़ी और रोते रोते बोली, ये अद्वैत नहीं है, ये द्वैत है, इन्होंने अलग कर दिया, मेरे लड़के को भेज दिया, उसको फुल टाइम बना दिया। इस फुल टाइम अब ऐसा ना हो कि निमाई भी ऐसा ही करे। तो इस प्रकार की जो भावना प्रकट की, निमाई को अच्छा नहीं लगा, गौर सुंदर को अच्छा नहीं लगा। जब महाप्रकाश लीला कर रहे थे शिवास पंडित के घर पे और सबको कृष्ण प्रेम दान में दे रहे थे, सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे थे, तो उस समय भक्तों ने कहा कि आपने अभी तक शची माँ को प्रेम नहीं दिया, प्रेम का दान नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं उनको प्रेम का दान नहीं करूंगा, उन्होंने अपराध किया अद्वैत आचार्य के चरणों में, अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि वैश्य अपराध से कितना हमें बच के रहना चाहिए। तो अद्वैत आचार्य से क्षमा मांगनी होगी, तब जाके जो है मैं विचार करूंगा। तो अद्वैत आचार्य को बुलाया गया, अद्वैत आचार्य को जब बुलाया गया, अद्वैत आचार्य को बताया गया कि शची माँ आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। अद्वैत आचार्य ने कहा क्या बात करते हो, शची माँ तो पूरे जगत की माता है, वो जगत की माता है, वो किसी का कोई अपराध कर सकती है क्या, वो तो पहले से ही कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है। तो अद्वैत आचार्य जब आए और अद्वैत आचार्य भाव की दिशा में नृत्य कीर्तन करने लगे और गिर पड़े, तो शची माता ने सोचा यही मौका है, उन्होंने अद्वैत आचार्य की चरण धूली लेकर अपने माथे पर लगा ली और निमाय देकर बड़े प्रसन्न हुए। निमाय ने कहा कि आज इनका अपराध माफ कर दिया मैंने, इनके सारे अपराध नष्ट हो गए, अब मैं इनको भी कृष्ण प्रेम देता हूं। हरी वो, हरी वो, हरी वो। तो इस तरह से अनेकों बाल लीलाएं करते हैं। एक बाल लीला और भी है जिसमें निमाई क्या करते हैं आंगन में, ये पहले की घटना है, शुरू की घटना है, जिसमें वो मिट्टी खा रहे हैं। तो शची माता ने देख लिया, तुम मिट्टी खा रहे हो, ब्राह्मण के लड़के हो, इतना भी तुम्हें समझ नहीं है, मिट्टी खाने की कोई चीज़ होती है क्या, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना दूंगी मैं, क्या चाहिए तुम्हें बताओ, शाक चाहिए, संदेश चाहिए, मिष्टी चाहिए, है ना, कई प्रकार की तरकारियाँ सब्जी हैं, व्यंजन हैं, है ना, ये भी खाने की चीज़ है क्या, मिट्टी को खाता है क्या, बेवकूफ। तो निमाई बोलते हैं मिट्टी से ही तो निकलता है सब कुछ,
कुछ. तो मिट्टी और इसमें क्या भेद है? मिट्टी खाओ या ये खाओ, बात तो एक ही है. तो ब्राह्मण के लड़के होके बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो, मिट्टी खाने से तुम्हारा पेट खराब होगा, अस्वस्थ हो जाओगे तुम, लेकिन उसी मिट्टी से जब तरकारियां बने खाओगे, मिष्ठान खाओगे तो स्वस्थ हो जाओगे. घड़े में जब पानी होता है तो ठंडा होता है, मीठा होता है, पीने लायक होता है. वही पानी जब मिट्टी में गिर जाता है, पृथ्वी जमीन पर गिर जाता है तो पीने लायक नहीं होता है, वो कीचड़ बन जाता है. तो शची माता जो है अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत सुना रहे हैं, बताइए. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई कृष्ण प्रेम किसी को प्राप्त हो गया है, या कोई कृष्ण प्रेम है, उन्मत है, या वात्सल्य प्रेम भी है शची माँ की तरह, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो सिद्धांत नहीं जानते हैं. इसका अर्थ यह है कि वो वास्तव में सिद्धांत जानते हैं, वही वास्तव में सिद्धांत जानते हैं. तो इस प्रकार शची माता ने यह अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया और निमाय ने बड़े खुशी से स्वीकार किया. तो अनेकों बाल लीलाएं होती थी वहां पर. तो एक लीला और बताएंगे, उसके बाद विराम देंगे, क्योंकि फिर दर्शन का समय हो जाएगा और बाद में 5 बजे अभिषेक भी है. एक बार जगन्नाथ मिश्र के घर पर एक ब्राह्मण आया. तो ये ब्राह्मण बहुत अनन्य भक्त था कृष्ण का, गोपाल जी की सेवा करता था, और शालिग्राम शिला भी थी इनके पास. तो ये गोपाल जी का विग्रह और साथ में शालिग्राम शिला लेकर वो अनेकों स्थानों में तीर्थाटन करता था, जंगलों में भी रहा करता था, कई तीर्थ स्थानों में रहता था, यात्रा करता था. नवदीप पहुंचा. नवदीप जब पहुंचा, जगन्नाथ मिश्र ने उस ब्राह्मण का तेज देखा उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर प्रकाश देखा. ब्राह्मण को आदर देते हुए ब्राह्मण का आदर सत्कार किया. जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि मेरी ये प्रार्थना है कि कुछ समय के लिए आप यहाँ पर अपना दिन बिताएं या रहें, और आप कृपा करके प्रसाद भी ग्रहण करें. तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं रहूँगा, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है, क्या मैं अपना भोजन स्वयं बना सकता हूँ गोपाल जी के लिए? उसी को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करूँगा. तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, हमारी रसोई है, मैं सफाई करवा देता हूँ, आप बना लीजिए जो आपको बनाना है. तो ब्राह्मण बड़े खुशी से बनाने लगे गोपाल जी के लिए, है ना, बहुत सुंदर व्यंजन बनाने लगे. और बनाने के बाद उन्होंने गोपाल जी को भोग लगाना शुरू किया और उन्होंने गोपाल मंत्र का उच्चारण किया. और जैसे गोपाल मंत्र का उच्चारण किया, निमाई वहां पहुंच गए. और निमाय जैसी पहुंचे, उन्हें थाली से वो प्रसाद ग्रहण कर लिया, भोग ग्रहण कर लिया. और जब भोग ग्रहण कर लिया, ब्राह्मण कहता है, हाय हाय, ये क्या कर दिया, सत्यानाश, मेरे गोपाल जी का भोग सारा खराब कर दिया. तो बहुत गुस्से में आए. तो जगन्नाथ मिश्र देखा निमाय को, तुम सुधरोगे नहीं, आज घर में ब्राह्मण हमारा अतिथि बनकर आया है और उसको भी तुम दुखी कर रहे हो, उसका तुमने भोग चुरा लिया, ये क्या हरकत है? ब्राह्मण कहता है, माफ कर दो, बच्चा है, छोटा बच्चा है, माफ कर दो उसको, है ना, समझ जाएगा धीरे धीरे, ठीक हो जाएगा. जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, मुझे क्षमा करिए, यह अपराध हुआ, मेरी ये प्रार्थना है, कृपा करके आप अपने लिए फिर से बना लें भोग गोपाल जी के लिए. तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो जंगल में रहने वाला व्यक्ति हूँ, भ्रमण करता रहता हूँ, तो मैं तो कंदमूल शाखा लेकर ही संतुष्ट हो जाता हूँ, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है. नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें, इस बार आप क्षमा कर दें, कृपा करके आप बना लें, मैं ध्यान रखता हूँ इस निमाय का इस बार. तो फिर ठीक है, अगर आप कहते हैं तो बना लेता हूँ फिर से. और फिर से बनाने गए तो शची माँ ने फिर अपने पड़ोसियों को कहा, माताओं को कहा, कि इसको आप अपने घर में छुपा के रखो, ताकि यहाँ पर सामने ना आ पाए और भोग ना चुराए. तो फिर से जो है ब्राह्मण ने भोग बनाया और गोपाल जी को भोग लगाया.
और गोपाल जी को जब भोग लगाया फिर से गोपाल मंत्र का उच्चारण किया और फिर से कुछ समय के बाद फिर से निमाई पहुंच गए और निमाई पहुंचे उन्होंने फिर से उन्होंने भोग खा लिया और हाय हाय ये क्या कर दिया और फिर से सत्यानाश कर दिया मेरा भोग बनाया जितना भी सब खराब कर दिया। लगता है कृष्ण चाहते नहीं है कि आज मैं ये प्रसाद ग्रहण करूं, मुझे तो कंदमूल शाखा में तृप्त होना चाहिए। जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रोधित हुए इस बार, उन्होंने कहा आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आज को सबक सिखा के रहूंगा, इसकी आज खैर नहीं। बहुत क्रोधित हुए जगन्नाथ मिश्र। ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण कहता है कि ब्राह्मण ने कहा कि देखिए ऐसा है जो भी है ये बालक है, ये समझ नहीं पा रहा है ना, अच्छा यही है कि मैं कंदमूल शाखा में तृप्त रहूं। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं मुझे क्षमा करिए कि बार बार ऐसा लड़का हरकत कर रहा है, मुझे तो बहुत ग्लानी हो रही है। इतने में अचानक वहाँ विश्वरूप पहुँच जाते हैं। विश्वरूप को देखकर वो ब्राह्मण जो है इतना प्रभावित हो जाता है, ये तब की लीला जब विश्वरूप ने संन्यास नहीं लिया, तो बहुत प्रभावित हो जाते हैं विश्वरूप के सौंदर्य को देख कर। बोलते ये कौन सा लड़का है, बोलते ये इसका बड़ा भाई है। अच्छा 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 ये तो बड़ा गंभीर लगता है। बहुत प्रभावित हुए विश्वरूप को देखकर। तो विश्वरूप कहते हैं देखिए आप ब्राह्मण हैं, आप यहाँ पर आए हैं, हमें सेवा का मौका मिला है, आप कृपा करके आपने लिए भोग बना लीजिएगा। मैं जानता हूँ कि आप कंदमूल शाखा में तृप्त हैं हो जाते हैं, लेकिन गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए आप बनाए, आप चिंता मत करिए सब ठीक रहेगा। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं आज अब उसकी हम व्यवस्था करते हैं, आज को कमरे में बंद करके रखेंगे। तो शची माँ निमाई को ले जाती है और कमरे में बंद कर देती है, ताला लगा देती है। आज अंदर रहेगा बाहर नहीं निकलेगा और आपका भोग बिल्कुल ठीक रहेगा, भोग लग जाएगा, गोपाल जी को प्रसाद आप ग्रहण कर सकेंगे। तो फिर से विश्वरूप के कहने पर विश्वरूप ने प्रार्थना की, तो विश्वरूप की बात को मान लिया ब्राह्मण ने, और ब्राह्मण ने फिर से बनाना शुरू किया भोजन, और फिर से बनाना शुरू किया, फिर से वो भोग लगाने लगे गोपाल जी को, और फिर से गोपाल मंत्र का उच्चारण किया। पहले उन्होंने कहा कि देखो कहीं निमाई तो नहीं है आसपास कहीं, क्योंकि अब भोग लगाने का समय आ गया है, फिर आ जाएगा यहां पे। तो वैसे पड़ोसियां ये भी कहते थे कि तुम निमाई सुधरोगे नहीं, ये ब्राह्मण बेचारा अपने लिए भोग ठाकुर जी के लिए भोग बना रहा है और तुम जाके बार बार खा लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकत करते हो, मैं क्या करूं, मुझे तो बुलाता है वो, बार बार मुझे पुकारता है इसलिए मैं बार बार जाता हूं, और जब तक पुकारता रहेगा मैं जाता रहूंगा। तो समझ नहीं पाते क्या कह रहा है, बहुत बिगड़ गया है लड़का। तो निमाई को अंदर कमरे में बंद करके रख देते हैं। तो फिर क्या होता है, शची माँ कहती हैं आज चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, आज हमारे निमाय शांति से सो रहा है, बिल्कुल सो चुका है, अब उठने की कोई संभावना नहीं है, कमरा भी बंद है, चिंता ना करें आप, आज आप निश्चित रूप से प्रसाद ग्रहण करें। रात के 1:30 बज गए, क्योंकि ये कई बार हो चुका था, कई बार भोग स्वीकार कर लिया, निमाय ने खा लिया, तो ऐसे करते करते रात के 1:30 बज गए, और 1:30 बजे जो है फिर निमाय को सुलाया गया था, और लगभग 2 बजे क्या हुआ, क्या क्या निमाई ने क्या किया, उन्होंने योग माया का पर्दा डाला और सारे जगन्नाथ मिश्र के घर में जितने भी लोग थे सब के सब सो गए गहरी नींद। जगन्नाथ मिश्र भी सो रहे हैं, चची माँ भी सो रही है, आसपास के पड़ोस के जितने भी लोग हैं सब सो रहे हैं घर में गहरी नींद में, और निमाई चुपचाप उठे, चलो चले क्योंकि वो मुझे भुला रहा है।